ब्रह्म विज्ञान केंद्र से कला शासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम है छांदोग्य उपनिषद ब्रह्म ज्ञान यज्ञ। कल तक द्वितीय अध्याय में प्रथम खंड हुआ था संपूर्ण साम की उपासना साधु दृष्टिया, ऐसा जो उपासना करता है उसको साधु धर्म, शोभन धर्म, श्रुति स्मृति अविरुद्ध धर्म सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं और सद्गुण प्राप्त होकर के उसके आगे उसको प्रगति कराते भोग्यत्व उपतिष्ठेयु अर्थात तो सद्गुण संपन्न होकर के आगे सन्मार्ग में चलता है पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। साधु दृष्टि विशिष्ट साम की उपासना कही गई, साम में साधु दृष्टि करके उपासना करना है। वो साम कौन है? ये साम में भी उपासना वेद मंत्र है। साम वेद में 1000 शाखा है और ऋग वेद में भी जितने श्लोक है उसमें साम का आरूढ़ करके गान करते हैं। यजुर्वेद में भी साम गान का श्रवण, गान का चिंतन और गान करना, गान में स्पष्ट दृष्टि करनी, ये सब बहुत उत्कृष्ट पलक है। जैसे विष्णु सहस्र नाम, 1000 नाम, नाम का पाठ, नाम श्रवण से भी बहुत पुण्य होता है। ध्यान का फल अलग है, यदि नाम पाठ करते समय अर्थ चिंतन करके पाठ करे तो अधिक फल होता है, और अर्थ चिंतन नहीं करे खाली पाठ का भी फल है। सर्वे विघ्ना समयांति गणेश स्तव पाठतः, केवल पाठ मात्र का भी फल है, अर्थ चिंतन चिंतन करे तो अधिक फल है। इसी प्रकार शाम के भाग का नाम, अलग अलग विभाग, अलग अलग में कैसी दृष्टि करनी, ये सब चिंतन करने से लोक दृष्टि से शाम का उपासना, ऐसे शाम के उपासना करते करते सारे ब्रह्मांड की दृष्टि करे, सर्वात्मक है ऐसे चिंतन करके, पर ब्रह्म सर्वात्मक है। तो इसे जहां कहां अष्टादश पुराण में जिस किसी देवता की स्तुति की जाती है अंत में वही माया विशिष्ट है, वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वही सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, वही सबके नियामक है, ऐसे कह करके अंत में वही निर्गुण है, निराकार है, मायातीत है कहकर के शुद्ध ब्रह्म आप है और आप अद्वितीय है, ऐसे कहकर के अंत में अद्वितीय ब्रह्म ही कथन करना है। सारे अष्टादश पुराण में यही तात्पर्य, कहीं किस नाम से कहेंगे, कहीं शिव पुराण कहेंगे शिव सबसे बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनसे निकृष्ट है, विष्णु पुराण कहें तो विष्णु सबसे बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये विष्णु में भी दो विभाग कर देते हैं, कार्यात्मक कारणात्मक, ऐसे ऐसे करके शक्ति पुराण देवी पुराण में भगवान कृष्ण को कहीं बड़े कहेंगे, कहीं राम को बड़े कहेंगे। सारे ब्रह्मांड नायक माया विशिष्ट चेतना वही ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, उनका रूप अलग अलग रूप धारण करते है, कभी किस रूप से प्रकट होते है। जो माया विशिष्ट चेतना ईश्वर है वो अशरीर है, केवल माया ही उनका शरीर, अन्य कोई शरीर नहीं है, किन्तु जब लीला करते लीला विग्रह धारण करके कभी किस रूप धारण करते, सर्वत्र ऐसे स्वरूप साकार रूप से चिंतन करते करते वहां लेकर के आगे रूप रहित माया विशिष्ट चेतन, माया विशिष्ट चेतन ईश्वर वही उनके अधीन सारे सगुण साकार सब कुछ है। और जो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है उनको क्या कहेंगे, वह ईश्वर है, उनका रूप अलग अलग है, अलग अलग है, तो कहीं किस रूप से ले करके माया विशिष्ट चेतन ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले जन्माद्य से अतः सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वर, और वो ईश्वर कौन है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा कहीं कहते थे ब्रह्मा ही सृष्टि करने वाले, किन्तु स्थिति करने वाले विष्णु और प्रलय करने वाले शिव आगे, ये तीनों मिला करके माया विशिष्ट चेतन कहीं किसी नाम से लेकर के वहीं पहुंचना है। और जो माया विशिष्ट चेतन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो सर्वात्मक है, क्योंकि सारे जगत का कारण, जैसे मिट्टी से बनेगा घटा सर्वादि सब मिट्टी ही, इसे माया विशिष्ट चेतन ईश्वर उस वही ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी है। लोक में घट बनाता है कुलाल, तो कुलाल होता है निमित्त कारण, मिट है उपादान कारण। किंतु ये जो ईश्वर माया विशिष्ट चेतन उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। माया अंश को लेकर के, उपाधि को लेकर के उपादान कारण है, और चेतन अंश को लेकर के निमित्त कारण है। इसे सर्वात्मक ही ईश्वर का कार्य, सारे आकाश आदि भूत भौतिक प्रपंच सर्वात्मक ही है। इसलिए सर्व वासुदेव सर्वम, सर्व ब्रह्म सर्वात्मक ईश्वर, और माया से रहित त्रिगुणातीत जो रूप है वही शुद्ध स्वरूप, वही एकमेव द्वितीयम। जिस प्रकार सर्वत्र इसे एक अद्वितीय तत्व, इसी प्रकार यहाँ विभिन्न प्रकार उपासना करते करते ओम इतेतद अक्षर मुद्गित उपासित कह करके अंत में फिर उसको लेकर के आकाश रूप है, प्राण रूप है, वही ब्रह्म रूप है, पर ब्रह्म स्वरूप है। इसी प्रकार शाम में जो कर्मांग में शाम गान करते हैं, जैसे स्तोत्र पाठ श्रवण से लाभ होता है, पाठ करने से लाभ होता है, उसके अर्थ चिंतन करने से अधिक लाभ होता है, ऐसे शाम गान का भी फल, शाम गान श्रवण करने में भी फल। ऐसे वेद पाठी को बुला करके पाठ कराते सुनते हैं, ऐसे जो वेद ठीक पाठ करते हैं, कभी कभी आते हैं बोलते तो पाठ करते सब लोग सुनते, बहुत सुंदर अच्छा लगता है यदि स्वर के साथ पाठ करते तो। और उसमें भी जो घन पाठ जटा पाठ आदि सीखते हैं, प्रत्येक अवयव एक एक अक्षर को समझ करके पाठ करते हैं, आगे पीछे पूरा शब्द दिखेगा। इसी प्रकार शाम पांच विभाग है, एक उद्गीत, उद्गीत आया पांच भाग में, मध्यम है उद्गीत, एक दो तीन चार पांच भाग है, आगे उसके सप्ताह भाग वाले भी कहेंगे। तो सात भाग को अलग अलग समझें, ऐसे अलग अलग समझ करके अलग अलग दृष्टि से उपासना, ऐसे करते करते सर्वात्मक सारे ब्रह्मांड की दृष्टि करके शाम की उपासना, वही शाम पर ब्रह्म स्वरूप हो जाएगी। प्रतीक उपासना करते समय कहीं भी प्रतीक से शुरू करते है उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी है। इसी प्रकार यहाँ शाम उपासना आरंभ करते हैं, किस प्रकार पांच प्रकार आगे सात प्रकार कहेंगे। लोकेशु पंचविधं साम उपासित पृथ्वी हिंकार अग्नि प्रस्तावंतरिक्षमुद्गीत आदित्य प्रतिहारो देवनिधनम इत्वर्ध्वेषु। लोकेशु पंचविधं साम उपासित, पांच प्रकार साम उपासना करे। श्रुति में तो आए लोकेशु, लोक में ये सब करे, किन्तु वस्तुतः यहाँ शाम की उपासना है लोक दृष्टि करके। लोकेश जो सप्तमी दिया है, लोक दृष्टि करके शाम की उपासना करे। लोकों में पांच प्रकार शाम है, तो शाम की उपासना उपासे शाम, उसमें लोक बुद्धि करे। कैसे लोक बुद्धि करे? पृथ्वी हिंकार, शाम का प्रथम भाग है हिंकार। हिंकार मतलब कार, वर्णात कार होता है, ये शाम एक शब्द आया। गान करते समय से हिम ऐसे आवाजिक शब्द करते हैं, जो हिम ऐसे शब्द करते हैं शाम के प्रथम भाग है, उसमें लोक पृथ्वी दृष्टि करे। वही पृथ्वी है, पृथ्वी दृष्टि करके चिंतन करे। पृथ्वी हिंकार प्रथम है, प्राथम्य है, यही समानता है। अग्नि ही प्रस्ताव, शाम के द्वितीय भाग का नाम है प्रस्ताव, प्रथम भाग का नाम क्या है हिंकार, द्वितीय है प्रस्ताव, और तृतीय का नाम क्या होगा उद्गीत पहला आया है, चतुर्थ का नाम है प्रतिहार, पंचम का नाम है निधनम, ये पांच इसमें आया। तो प्रस्ताव भाग में अग्नि दृष्टि करके उपासना करें, प्रस्ताव में अग्नि बुद्धि करें। अग्नि आरंभ करके कर्म प्रारंभ, अग्नि में ही कर्म आरंभ किया जाता है, इसलिए अग्नि प्रस्ताव रूप, प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है, प्रस्ताव के भाग है, तो अग्नि दृष्टि उसी में करे प्रस्ताव भाग में। उसके बाद अंतरिक्षम उद्गीत, उद्गीत नाम को तृतीय भाग, उसमें अंतरिक्ष आकाश बुद्धि करे। आगे आदित्य प्रतिहार, प्रतिहार है चतुर्थ भाग शाम का, उसमें आदित्य बुद्धि करे। जैसे अंतरिक्ष में आदित्य, उद्गीत के बाद प्रतिहार, आदित्य बुद्धि करे। आदित्य बुद्धि से प्रतिहार भाग का चिंतन, देवर निधनम, और निधन है पंचम भाग का नाम, ऐसे निधन का अर्थ मृत्यु कहते, यहाँ निधन के साम भाग का नाम है। तो निधन में देव स्वर्ग बुद्धि करे, द्यू में निधन कहते क्योंकि इसमें सब कुछ स्थित है। निपुर धा स्थापनार्थ निधानम, इसमें सब स्वर्ग जाकर के यहाँ से जो जाते हैं स्वर्ग में स्थित होते हैं, इसे निधन में स्वर्ग बुद्धि करके उपासना करे। इति ऊर्ध्वेषु ऊर्ध्व लोक को दृष्टिया साम की उपासना, साम की उपासना करते समय पृथ्वी दृष्टि करे पहले, द्वितीय में अग्नि बुद्धि करे, फिर आदित्य बुद्धि करे, फिर अंतरिक्ष बुद्धि करे। अंतरिक्ष पहले लगे प्रस्ताव अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष उद्गीत आदित्य प्रत्याहार अध्ययन निधन, ऐसे बुद्धि करके उपासना साम की किम दृष्टि करके। जैसे प्रतीक उपासना में शालग्राम विष्णु बुद्धिया शालग्रामी की उपासना, इसी प्रकार यहाँ लोक बुद्धि से साम की उपासना। अभी ऊपर गए आगे अथा आवृतेशु द्यौर हिंकार आदित्य प्रस्ताव अंतरिक्ष उद्गीत अग्नि प्रतिहार पृथ्वी निधनम, विपरीत क्रम से आते हैं। अब यहाँ से पृथ्वी आदि करके गए थे, अब अंत में पहले अंतिम द्यौ बुद्धि क्या था, निधन में स्वर्ग बुद्धि क्या था, जो वापस आएंगे द्यौर हिंकार, हिंकार में स्वर्ग बुद्धि करे विपरीत, हिंकार में द्यौ, फिर द्वितीय में प्रस्ताव में आदित्य, वहां चतुर्थ में प्रत्याहार में आदित्य बुद्धि, अभी द्वितीय में हो गया आदित्य प्रस्ताव, और तृतीय अंतरिक्षम उद्गीत था, यहां भी वही रहेगा। वापस आएंगे तो तृतीय तो तृतीय में ही, एक दो तीन चार पांच उधर से आएंगे तो तृतीय रहेगा, इसलिए अंतरिक्षम उद्गीत। चतुर्थ अग्नि प्रत्याहार, द्वितीय अग्नि था प्रस्ताव, यहाँ चतुर्थ हो गया प्रत्याहार, प्रत्याहार में अग्नि बुद्धि करे, और अंत में पृथ्वी निधन, निधन नाम के भाग में पृथ्वी बुद्धि करे। ये जाना आना ऐसे होता है, जो इतर आ जाते हैं पृथ्वी में से स्थित होते हैं इसे उसको निधन कहते हैं, यहाँ यहाँ रहते हैं। ये से जो चिंतन करते पांच भाग हुआ, एक दो तीन चार करे कि साम भाव का ऐसे चिंतन करे, ऐसे करने से क्या लाभ होगा, आगे फल कथन करते हैं उपासना का फल। कल्पन्ते हास्मी लोका ऊर्ध्वाश्चावृताश्च ये एतदेव विद्वान लोकेषु पंचविधम सामोपास्ते। कल्पन्ते क्लिप सामर्थ्य, समर्थ होते हैं उसको प्राप्त होते हैं, अस्मी लोका सारे लोग उसको प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते मतलब लोग तो सबको प्राप्त है, पशु पक्षी को भी प्राप्त है, जो दुख भोगता उसको भी प्राप्त है, किन्तु यहाँ प्राप्त होते मतलब भोग्यत्व उपस्थित होते हैं, उसमें ये लोक में भोग करता है सुख से रहता है। ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च इस ऊपर नीचे जितने सब गत्यागति विशिष्ट भोग्य होते हैं, जो इसे विद्वान उपासना करके पांच प्रकार साम की उपासना करता है, लोक बुद्धि करके साधु साम उपासना करता है, उसे पांच प्रकार दृष्टि करके उपासना करता है, इसे सर्वत्र इसी प्रकार आगे सप्तविध भी कहेंगे। अभी आगे दूसरा है साम उपासना, दृष्टो पंचविधम साम उपासित पुरोवातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीतो विद्युतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृणाति तन्निधनम्। दृष्टि बुद्धि करके साम की उपासना, सर्वत्र साम उपास्य है, साम में अलग दृष्टि करके उपासना करे, तो पहले लोक बुद्धि करके अभी दृष्टि दृष्टि करे, दृष्टि दृष्टि करके साम की उपासना, तो क्योंकि लोक दृष्टि के अनंतर अभी वृष्टि है, वृष्टि होने पर लोक की स्थिति होती, वृष्टि होने पर अन्न आदि होता है, तो लोग अन्न आदि भक्षण करते है, अन्नरस आदि से जीवन धारण करते है, पिंड आदि दान करते है, हवि प्रदान करते है, स्वर्ग आदि की स्थिति होती, तो पहले वृष्टि होने पर लोक स्थित हो तब सारे लोक की स्थिति। प्राणी कर्म करेंगे कर्म से स्थित होता है, धर्म सारे ब्रह्मांड को रक्षा करने वाला, धर्म फिर कैसे होगा, प्राणी अनुष्ठान करेंगे तो धर्म होगा, शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो धर्म होगा, वही धर्म धरत इति धर्म, जो धारण करने वाला धर अध्रियत इति धर्म, धारण किया जाते भी हो, धर्म सब की रक्षा करने वाले और धर्म ही धारण किया जाता है, धारण किया जाता है क्या अर्थ है, कोई सिर में धारण किया थोड़ी देर धारण करने के बाद गिरा दिया, वो धारण नहीं कर पाया, धारण करता है मतलब जब तक चाहे रखा जब चाहे उसको निकाल लिया, लेकर कुछ पकड़ा दिया पकड़ा फिर लेकर जहां रखा वहां रख दिया, तो धारण किया गया, अपनी इच्छा से धारण करे जब चाहे हटाए तो धारण करता है, थोड़ी देर गिर पड़ा नहीं रख पाए तो धारण नहीं कर पाया। गिरिधारी भगवान श्री कृष्ण को कहते पत्थर को उठा दिए और बीच में छोड़ देते तो सबको बुला दिया आ जाओ और पत्थर पर्वत गोवर्धन छोड़ देते बीच में तो कोई उनको गिरिधारी कहता। थोड़ी देर धारण किया उनसे, धारण कर रखा जब तक चाहे उसके बाद सबको हटा करके फिर रख दिया। इसी प्रकार धर्म ही धारण किया जाता है। कोई जाता है रखता है धन संपत्ति, हीरे लगा करके मुकुट पहने जाते समय क्या लेकर जाएगा? कुछ नहीं। जितने हो मुकुट है सर धन संपत्ति जितने हो कुछ धारणा करके नहीं ले जाता है। तो धारण का क्या किया? जो जाते समय नहीं ले पाए तो छोड़कर क्या तो धारण किया? धारण तो ही करता है जो लेकर जाता है रखता है। क्या धारण करके जाता है? धर्म ही धारण किया जाता है। जिसको कोई हटा नहीं सकता है, मर जाता है गिर गया अस्वस्थ हो गया तो भी कोई ऊपर से गिरा नहीं, मुकुटा तो गिर जाता है, नहीं गिरने पर हटा कर ले लेंगे। अलंकार भूषण कोई रखा गया है अपने आप नहीं गिरता तो बंधु लोग छोड़ते नहीं अलंकार को, सोना चांदी हीरे आदि को हटा ले निकाल लेते हैं। किंतु धर्म को कोई नहीं सकता हटा सकता है, न चोर ले सकता है, न असत्य होने पर गिर जाएगा या अपने नहीं चाहेगा, ऐसा नहीं। धर्म को लेकर जाना पड़ता है, इसलिए ध्रियते अर्थात धारण किया जाता है, इसलिए इसका नाम धर्म। और धारण करता है इसलिए हो गया धर्म। जगत का धारण करता है, जगत स्थित रहता है धर्म से। अधर्म पाप भी करते हैं बहुत, किंतु अधर्म भी है। अभी इस समय जितने लोग आए हैं अपने पुण्य पाप लेकर के आए, जो पुण्य लेकर के आए वो धर्म, किसी जन्म कितने जन्म पहले, हजार जन्म करोड़ जन्म पहले कोई क्या कर किया था, अभी प्रारब्ध लेकर के आए। जो धर्म अधर्म लेकर के आए, यही धर्म अधर्म प्राणियों का धर्म अधर्म ब्रह्मांड को रखा है। जब तक प्राणियों का धर्म है तब तक उनको भोग करने के लिए ऐसा रहेगा। धर्म अधर्म समाप्त होगा तो प्रलय हो जाएगा। यही धर्म धारण करने वाला संसार की सृष्टि और प्रलय प्राणियों के अदृष्ट से ही परमात्मा करते हैं। प्राणियों कर्म फल देने के समय हुआ भगवान सृष्टि करते हैं और सब प्राणी अपने कर्म से भोग करेंगे। और कर्म ऐसे कुछ कर्म रहता है एक जन्म क्या दूसरा जन्म से भोगते भोगते होते समाप्त हो जाता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कर्म फल भोग नहीं होता है, जागृत सपने में कर्म फल भोग हुआ वो समाप्त हो गया सुषुप्ति, फिर कर्म तैयार हो गया फिर उठना पड़ता है उठ जाना पड़ता है। इसी प्रकार समाप्त हो जाएगा कर्म प्रलय, फिर कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए फिर सृष्टि। तो संसार का धारण धर्म ही करता है, इसलिए धर्म से धारण होता है। जो इसे उपासना करता है तो सबका धारण कर रखता है। तो यहां पृथ्वी में कर्म करते हैं, कर्म करने पर धर्म होता है, अन्न से वृष्टि होने पर अन्न होता है, अन्न भक्षण करते हैं, अन्न से पुरुडा शादी बनाकर यज्ञ करते हैं और देवताओं को अर्पण करते हैं, धर्म होता है। धर्म से सुधारण किया जाता है, इसे वृष्टि लोक दृष्टि के बाद वृष्टि दृष्टि करते हैं, क्योंकि लोक की स्थिति वृष्टि के निमित्त, वृष्टि वर्षा होने पर अन्न आदि होता है उससे लोक की स्थिति, वर्षा नहीं होने पर अन्न आदि तो नहीं होता है। कितने स्थान में पानी सूख जाता है तो लोग मर जाते हैं, ऐसे बहुत स्थान में पानी का भी अभाव हो जाता है। तो वृष्टि दृष्टि करके ये उपासना करने के लिए कहते हैं। पूर्ववात हिंकार, शाम के प्रथम भाग हिंकार में पूर्ववात, पूर्ववात है वृष्टि होने के पहले वायु आदि चलता है, पूर्ववात प्रथम होता है। उसके बाद मेघो जायते स प्रस्ताव, शाम के द्वितीय भाग प्रस्ताव में मेघ बुद्धिकर मेघ उत्पन्न होता है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में पहले वायु पूर्व दिशा में इधर उधर चलने पर फिर मेघ उत्पन्न आता है, मेघ आने के बाद वर्षा होगा। मेघ जायते सब प्रस्ताव, प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है, फिर वर्षति स उद्गित, और जब वर्षा होती उसका नाम उद्गित, श्रेष्ठ है उद्गित वृष्टि। वृष्टि के पहले से पूर्ववात होता है, फिर वायु मेघ होता है तो वर्षा होती। और कभी विद्युत स्तनयति सब प्रत्याहार, विद्युत जो है विद्युत होता है, मेघ स्तनयते गर्जन होता है, हो गया सब प्रतिहार उसका उद्गृहणाती, फिर वर्षा समाप्त हो जाने पर ग्रहण कर लिया ले लिया जल को रख दिया वर्षा बंद हो जाती तन निधनम। इसी प्रकार पांच प्रकार दृष्टि करके वृष्टि दृष्टि से शाम की उपासना, इसका फल कहते वर्षतिहास्मे वर्षे तिहाय एतदेव विद्वान वृष्टु पंचविधम सामोपास्ते। ऐसी प्रकार शाम में वृष्टि दृष्टि करके उपासना करता है उपासना इतने मंत्र जप का भी फल है, किंतु खाली थोड़े मंत्र थोड़े जप कर दिया इतने नहीं होता है, मंत्र सिद्धि करनी पड़ती है। मंत्र सिद्ध करने से जो विशेष फल प्राप्त होता है, कितने जप करे, कितने एकाग्र करे, एकाग्र से जप करे, इष्ट देवता उसमें प्रसन्न हो जाए, तो मंत्र सिद्ध होने पर फल प्राप्त होता है। उपासना का भी ऐसे उपासना करते करते एकदम तन्मय हो जाए, उपासना का फल प्राप्त होता है। और बहुत नहीं हो पाता है तो भी, जैसे भगवान का ध्यान करते हैं, ध्यान करके बिल्कुल तन्मय हो जाए तो परमात्मा प्रकट होंगे, फल देंगे, प्रसन्न होंगे, तो ठीक है। किंतु पूरा नहीं हो पाता, थोड़े थोड़े करते, सब लोग ध्यान भजन करते हैं, पूरा भगवान का दर्शन तो नहीं कर पाते, किंतु व्यर्थ नहीं होता है। ऐसे थोड़ा चिंतन करते, थोड़े नाम लेते, थोड़ा जप करते, तो भी उसका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो अत्यधिक उपासना करके कर सकते हैं वो फल प्राप्त कर लेते हैं, और बहुत अधिक नहीं कर पाते, थोड़े थोड़े करते थे, थोड़े थोड़े परमात्मा की प्रसन्नता होती है। अब कितने जन्म के ऐसे धर्म भक्ति मिल करके फिर परमात्मा की प्रसन्नता से फिर अंतकरण की शुद्धि, उत्कृष्ट जन्म की प्राप्ति, फिर वैराग्य ज्ञान आदि प्राप्त होता है। जो इस प्रकार उपासना करता है उसमें तन्मय होकर उपासना करता है, अच्छे जो एकाग्र होकर उपासना कर सकते हैं उनमें यह सामर्थ्य आता है। वर्षते अस्मै, इसके लिए इच्छा से वृष्टि हो जाती है। वर्षयति ह, यह और वृष्टि कराता है, मेघ नहीं होने पर ही वृष्टि कराता है। यह एतदेव विद्वान वृष्टु पंचविधम सामोपासते, इसे जान करके वृष्टि दृष्टि करके पांच प्रकार सामोपासना करता है तो वृष्टि कराता है, मेघ नहीं होने पर भी वृष्टि करा देता है। यही कला शासन के विष्णु देवानंद गिरिजी महाराज और के थे, चैतन्य गिरिजी महाराज अष्टम पीठाधीश्वर थे, विष्णु देवानंद गिरिजी षष्ठ थे, वो षष्ठ पीठाधीश्वर वहां फलौदी में राजस्थान में एक स्थान है, वहां चातुर्मास कर रहे थे। वहां राजस्थान में वर्षा नहीं होती तो वो लोगों ने कहा थोड़ा कुछ कृपा कर दिए, वर्षा हो जाए लगातार चातुर्मास बहुत दिन रह, चातुर्मास से सत्र अधिक समय रह गई, ऐसे रह गए। बड़े बड़े विद्वान कला शासन में होते थे, वो बाहर जाकर रहे तो यहां पठन पाठन ही चलता है, वहां रह गए बहुत दिन, अच्छा उनको लगातार रह गए। तो सब लोग ने इतनी प्रार्थना की वर्षा करा वर्षा करो, बोले अच्छा कराते हैं, कुछ अनुष्ठान किया। ऐसा अनुष्ठान करने के बाद सब महाराज जी कहते जल्दी प्रसाद पाकर आप लोग चले जाओ, बहुत जोर वर्षा होने वाली, जल्दी चले जाओ। लोग को आप कुछ नहीं बोल पाते हैं, कहीं भी कुछ बादल नहीं दिखता है और कहा वर्षा होगी, तभी कुछ लोग तो जल्दी कहे महाराज जी कहते हैं, और महाराज जी ऐसा नहीं कहेंगे, बस जल्दी जल्दी प्रसाद पाकर चल जाओ, जोर वर्षा होने वाली, बहुत जोर वर्षा होगी, बहुत पानी, ऐसे कहते रहते। महाराज कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रह भी गए। वो स्थान अभी मैंने देखा था, वो नाला कहते, अब नाला जैसे अभी अन्य समय जाओ तो पता नहीं चलता नाला करके, ऐसे रहते रहते है रास्ता ऊपर बन गया, वहां पानी इतने आ गया लोग इस पार से उस पार नहीं जा पाए, बहुत वर्षा हुई। वो लोग जो उस समय थे अभी भी है, यहां भी एक आई थी तीन चार पांच सात दिन पहले महिला, और वहां फलौदे हम गए थे, वहां पुराने बूढ़े कोई कोई बताते बोले हम थे हम देखे, और उस समय वर्षा इतने अधिक हो गई तो सब लोग उसको अभी भूल नहीं पाते। आगे जो लोग नहीं देखे उनको सुन करके मानते, और एक तालाब में पानी नहीं रहता था, सूख जाता था, वहां कुछ तीर्थ के जल लेकर के रह करके कुछ उपासना करके किया, तभी से वो तालाब में पानी रहता, अभी भी तालाब है, पानी सूखता नहीं। अभी ऐसे पानी कम होने पर कुछ पानी ला करके पाइप कहां ला करके इसमें मिला देते हैं, किंतु अभी देखा कि तब से वो सूखा नहीं। अब वर्षा जो हुई है प्रामाणिक है, ये कहते उन्होंने यही वृष्टि दृष्टि करके उपासना की थी, करके उपासना करे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उधर इसे उपासना करने लग गए, सब लोगों को कहा, कारण से उनके इसे कृपा हो गई, सामर्थ्य था, उपासना करने लगे तो वर्षा होगी, वर्षा हुई तो बहुत जोर से वर्षा हुई थी करे, तब से वहां के फलोदी में ब्राह्मण लोग बहुत है, तब से कला शासन सा संबंध, हम भी दो बार गए हैं, ऐसे बुलाते आते जाते संबंध है, बहुत लोग बहुत मानते हैं। तो ऐसे उपासना करके जो तन्मय होकर उपासना करे तो फल प्राप्त होता है, और बाकी जो इसे पूरा नहीं कर पाते हैं अथवा फल नहीं चाहते उनका उपासना व्यर्थ नहीं होता है। फल प्राप्त वृष्टि नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं पाए तो कुछ करते हैं तो परमात्मा की कृपा होती है, और जो नहीं चाहता है फल उसको सारे उपासना का फल, ये उपनिषद में जो है उपासना, सब अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ये मुख्य फल है। बाकी जो इसे करता है फल प्राप्त होता है। सर्वास्वप्सु पंचविधम साम उपासित मेघो यद संप्लवते स हिंकारो यद वर्षति स प्रस्तावो या प्राच्य संदते स उद्गीतो या प्रतीच्य स प्रतिहार समुद्रो निधनम। वर्षा में वर्षासु अपसु वर्षा में जल में जल दृष्टिया वर्षा जल दृष्टिया पांच प्रकार वृष्टि होगी उसके बाद जल भर गई। जल दृष्टिया शाम की उपासना फिर मेघो यत संप्रवते मेघ संप्रवते तो इकट्ठी होते घनीभूत होता है आगे वर्षा होने के लिए। स हिंकार यद वर्षति स प्रस्ताव या प्राच्य संदते पूर्व दिशा में बहने वाले नदी है प्राच्य संदते उस श्रेष्ठ हो गया संदते स उद्गीत या प्रतीच्य प्रति पश्चिम दिशा में जाने वाले ये प्रतिहार फिर नदी जाकर के पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में बह करके कहा मिलेंगे समुद्र में समुद्र निधनम। न हाप सुप्रेप्यपसुमान भवति यदेव विद्वान सर्वास्वप्सु पंचविधम सामोपास उपास्ते। इसका फल हुआ अपसु न प्रेति जल में कभी वन्य से मर जाते हैं कभी स्नान करते समय कोई मर जाता है कभी कभी ऐसे होता है जल में तो यहाँ ऐसे उपासना करने वाले अपसु न प्रेति मरे या नहीं अपसुमान भवती और जल पर्याप्त हमेशा प्राप्त करेगा जल का अभाव उसको कभी नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे अभी सब जल व्यवस्था है कभी समय था अभी भी कुछ समय कहीं है और बहुत समय में वर्षा नहीं होने पर इतने अभाव हो जाते पानी पीने के नहीं मिलता दूर दूर से लोग पानी के लिए जाकर लाइन लगा अभी भी कहीं कहीं होता है घड़े लेकर बर्तन लेकर लाइन में खड़े होते पाइप में कभी पानी आएगा। अभी अभी कुछ सुना था कहीं किसी द्वीप में पानी अभाव तो जहां समुद्र में है कि बताया कभी अभी 15 दिन के अंदर कि समुद्र में बनने आदि हो जाने से वहां नमक के पानी को शुद्ध करके पीते हैं अन्य पानी नहीं मिलता है तो भारत से उनको भेजा गया कोई अंडमान आदि होगा अंडमान निकोबार ऐसे कुछ द्वीप में तो पानी अभाव होता है तो वहां पानी पीने नहीं मिलता तो कितने अभाव समुद्र पानी भरा हुआ है किंतु उसको नहीं पिए उसको पीने के लिए कुछ करके फिल्टर करके निकाल कर पी सकते नहीं पी सकते तो अभाव होता है तो फिर कितने पानी के अभाव से लोग मर जाते हैं पशु बहुत पशु पक्षी मर जाते पशु मर जाते हैं तो ऐसे होता है जल ये एक फल बताया इस उपासना करने वाले जल अभाव नहीं होगा जल में मरेगा नहीं। और ये सब तो अंतरंग सामान्य फल है मुख्य फल ये नहीं है सारे कर्म उपासना का पहले बताया था सब का मुख्य फल है अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का। जिस प्रकार लोक उपासना करते भक्ति करते हैं स्मार्त उपासना लोक प्रसिद्ध है ये श्रौत उपासना जो करते हैं ऐसे जो जानकर करते इसका फल प्राप्त करते हैं और ज्यादा नहीं जैसे तीर्थाटन करते हैं मंदिर दर्शन करने के जाते हैं कभी कभी मिल करके बहुत लोग मिल करके स्पेशल ट्रेन करके गाड़ी लेकर जाते हैं तीर्थाटन करते 15 दिन महीना में घूम घूम करके सब दर्शन करे आते हैं 15 दिन महीना एक स्थान में बैठ करके आप जप ध्यान करो जितने एकाग्र होता है एक महीना बाहर घूम घूम कर आएंगे पर इसे ध्यान भजन होता नहीं होता है किंतु विभिन्न तीर्थों का दर्शन होता है मंदिर में विभिन्न स्थान दर्शन करके प्रणाम करके आते पूजा आदि करके आते हैं तो एक बार दर्शन करने पर पूजा करके आते हैं तो उसका भी लाभ होता है उसके आगे उसका चिंतन स्मरण करते कभी उसके बारे में पढ़ते पुराण आदि पढ़ते तो दर्शन किया तो कुछ विशेष उसमें संस्कार होता है तो लाभ होता है। इसी प्रकार जो अधिक उपासना करे तो अधिक फल प्राप्त करेगा और एक बार दर्शन कर लिया एक बार प्रणाम कर लिया तो व्यर्थ हो गया नहीं। इसे लोग तीर्थाटन कर जाते तो बार बार सो नहीं कोई लोग बार बार करते हैं कोई नहीं कर पाते हैं। हम अमरनाथ गए थे एक लड़का 12-14 साल का उड़ता में 5 साल से प्रतिवर्ष आता हूं उसका ऐसे हो गया अकेले आकर बड़ा आता है चलता अच्छा हमें आता हूं। और कोई कई लोग कहते हम कितने साल से आते हैं प्रतिवर्ष जाते हैं जिनके ऐसे हो जाता है वो करते कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं प्रतिवर्ष जाते हैं कोई एक बार जा सकता है कोई नहीं भी जाते हैं कोई समर्थ होकर संपन्न होकर नहीं कर पाते हैं। कितने लोग हैं वहां ऋषि के तरह जाते हैं बद्रीनाथ का दर्शन नहीं किया हुआ बहुत लोग है समर्थ है गाड़ी आदि है व्यवस्था है सब जाते हैं भक्त दिल्ली से जाते हैं किन्तु वहां तक जाकर के आगे कभी नहीं जा पाते ऐसे भी होता है। और करने वाले पद यात्रा करके दर्शन करते हैं, तो कोई बार बार दर्शन करते हैं, और सब तीर्थ का दर्शन कोई बार बार नहीं कर सकता है, तो एक बार भी दर्शन करते हैं, एक बार प्रणाम करते हैं, एक बार तो उसका भी फल मिलता है। किसी प्रकार की उपासना का अधिक कर तो अच्छा है, थोड़े किया अभी समझा, अभी कभी कभी उसके संस्कृत अर्थ नहीं समझ आए तो हिंदी अर्थ पढ़ ले, पढ़कर थोड़े चिंतन कर ले, कैसे कैसे उपासना, किस में क्या दृष्टि करनी, ऐसे चिंतन करते ही उपासना हो जाता है। अरे उपासना ही फल देने वाले, श्रद्धा विश्वास चाहिए। जो लोग श्रद्धा विश्वास नहीं करते हैं वो लोग मूर्ति पूजा का भी खंडन करते हैं, कहते हैं पत्थर है, वो लोग ऐसे मजाक करके लोग ताछी ले कहते क्या देखो, कुछ लोग खंडन करने वाले होते हैं ना, पूजा सब करने के बाद दीप से आरती करते हैं, आरती करके क्या करते हैं दिखाते हैं, तुम देखो लोग वो लोग को कहते हैं ये आरती करके दिखाते तुम लोग मूर्ख हो, तुम भगवान करे पूजा करते हो, देखो क्या है, कहाँ ऊपर देखो नीचे देखो पत्थर ही पत्थर है, देखो अच्छी तरफ से देखो कहाँ कुछ है कुछ नहीं, ये दिखाते है। और सब देखने के बाद फिर भी ये तुमको समझ नहीं आता है, उसमें पानी देकर के फेंकते हैं ना, कहती है थोड़े पानी में डूब कर मरो, इतने दिखाने के बाद तुमको समझ नहीं आया ये पानी में डूब कर मरो। ये लोग कहने वाले कहते ही करते हैं, जो पूजा कर दिखाते ना ये कहते हैं, तो अर्थात इसे खंडन करने वाले तो कुछ ना कुछ कहते हैं, किन्तु करने वाले आरती दर्शन करके दूर दूर से आते है, पूजा करते प्रणाम करते फल प्राप्त करते है, खंडन करने वाले खंडन करते हैं। श्रद्धा से जो करता है, जितने श्रद्धा से करता है इतना अधिक फल प्राप्त होता है, और जो श्रद्धा नहीं तो उसको फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ये वैदिक उपासना है, ये कोई किसी व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति का नहीं, वेद में है, जो वेद में अनादि वेद में यही श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा मेरी आज्ञा, और श्रौत उपासना स्मार्त उपासना से उत्कृष्ट है, वेद सबसे मूल प्रमाण है, आगे तन्मूलक स्मृति पुराण आदि सब प्रमाण है श्रुति सम्मत होने पर, और वैदिक उपासना में भी फल है, ऐसा सोच करके चिंतन थोड़े करे तो फल मिलता है, और फल जो सकाम से करता है कामना के अनुसार फल मिलेगा, निष्काम करने से अंतकरण की शुद्धि होती है, तुरंत पता नहीं चलता, किंतु अधिक उपासना करता है, जैसे कोई जप ध्यान अधिक समय करता है, जब उपवास करता है ध्यान करता है अधिक चिंतन करता है पाठ करता है, तो कुछ दिन करने पर उसको फल अनुभव होता है, पाठ करता है तो उसे मन में शांति कम से कम होती, और नहीं करता तो शांत रहता है, अधिक करता है तो मन कैसे एकाग्र होता है, बहिर्मुखता नष्ट होती है, वैराग्य बढ़ता है, ये साधक अनुभव करते ही, इसी प्रकार इस उपासना करने से उसका फल अनुभव होगा, किन्तु जैसे कहा गया ऐसे कम से कम श्रवण होता है, उसके बाद थोड़ा कभी समय मिले थोड़ा देख ले पढ़ ले समझ ले तो भी उपासना हो जाती है, अब जो जितने कर सके सब अलग अलग साम में उपासना कहते हैं। ऋतुषु पंचविधम साम उपासित वसंतो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गित शरद प्रतिहारो हेमंतो निधनम। साम पांच प्रकार साम में ऋतु बुद्धि करे, ऋतु बुद्धि करके साम उपासना करे। ऋतु की जो व्यवस्था होती है जल के निमित्त वर्षा के कारण, वर्षा के बाद शीत, वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु और वसंत, ये सब ऋतु जल के निमित्त होकर के, तो पहले वसंतो हिंकार, हिंकार जो साम का प्रथम भाग हिंग उसे वसंत ऋतु की दृष्टि करे, उसे द्वितीय भाग है प्रस्ताव उसमें ग्रीष्म ऋतु की दृष्टि करे, तृतीय है उद्गित उसमें वर्षा की दृष्टि करे, चतुर्थ भाग है प्रतिहार उसमें शरद ऋतु की दृष्टि करे, और पंचम भाग है निधन उसमें हेमंत, उसमें शीत और हेमंत को मिला करके एक कर देते पंचविध होता है हेमंत निधनम। हेमंत ऋतु में वायु का अभाव होता है, उसमें बहुत लोग मर जाते करके उसकी दृष्टि करने के लिए कहा गया। फल आगे कहते हैं, कल्पन्ते हास्ना ऋतव ऋतुमान भवति यतदेव विद्वान ऋतुषु पंचविधम साम उपास्ते। ऋतु व्यवस्था के अनुसार भोग्य उसको प्राप्त होता है उपासक ऋतु, ऋतुमान भवति ऋतु वाला होता है, ऋतु के संबंधित भोग से युक्त होता है, जिस ऋतु से जो फल, जिस ऋतु से जो भोग्य, जिस ऋतु से जो संपद, वो सब उसको प्राप्त होता है ऋतु के अनुसार। पशुषु पंचविधम साम उपासित अजा हिंकारो अवय प्रस्तावो गाव उद्गित स्वा प्रतिहार पुरुषो निधनम। पांच प्रकार साम्य में पशु बुद्धि करके उपासना करें, अजा हिंकार, हिंकार प्रथम है भाग, उसमें अजा बकरी बकर दृष्टि करे, बकरा है अज बहुवचन अजा। द्वितीय भाग प्रस्ताव, उसमें अभी अब भेड़ होते हैं दृष्टि करें। तृतीय भाग उद्गित, उसमें गो दृष्टि करें। चतुर्थ भाग प्रत्याहार, उसमें अश्व बुद्धि करें। अब पंचम भाग निधन, उसमें पुरुष बुद्धि करें, क्योंकि पुरुष निध्य निधि होता है, नई पूर्व स्थापन के लिए पुरुष में सब स्थापन आश्रित है, सारे पशु पुरुष में आश्रित होने से पुरुष में निधन बुद्धि करें। अज पशु नाम प्रथम, पशु में प्रथम अज को कहा गया और गो से उद्गित कहा गया। भवन्ति हास्य पशव पशुमान भवति एतदेवं विद्वान पशुषु पंचविधम साम उपास्ते। अस्य पशव भवन्ति, पशु उसको उसको प्राप्त होते हैं, पशुमान भवति पशु रूप फल से युक्त होता है। पशु भी धन, पहले पशु अधिक रखते थे, गो आदि पालन करते थे, पशु पालन करते थे, पशु अधिक धन अभी भी जो करने वाले करते हैं, पशु धन है। और भोग होता है, त्याग होता है, घृता आदि होता है, इस प्रकार पशुषु पंचविध साम उपासना का फल। प्राणेशु पंचविधम परोवर्य साम उपासित प्राणो हिंकारो वाक् प्रस्तावस्य चुरुद्गित श्रोत्रो प्रत्याहारो मनो निधनम परोवर्यान शिवाय तानी। प्राण बुद्धि से पांच प्रकार साम उपासना करे। परो वर्य, पर से भी पर है उत्कृष्ट, और वरे वर्यान गुणवान प्राण, ये प्राण है गुणवान है उत्कृष्ट है प्राण, प्राण में श्रेष्ठ चिंतन आया, ऐसे गुण विशिष्ट प्राण दृष्टि से साम की उपासना करे। प्राणो हिंकार, पहले हिंकार में प्राण बुद्धि करे, और दूसरा भाग है प्राणो हिंकार, प्रस्ताव भाग में वाक दृष्टि करे, उद्गित में चक्षु दृष्टि करे, ये प्राण शब्द से इंद्रिय ले लेना है, इंद्रिय लेते हैं। प्रत्याहार में श्रोत्र बुद्धि करे, और निधन भाग मनोबुद्धि करे। परोवर्यान शिवा एतानी, ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट है सब इंद्रिय व्यापक है मन, सारे इंद्रिय के व्यापक मन है, इसे मन हो गया उत्कृष्ट सबसे मन में स्थित है। परोवर्य हास्य भवती परोवर्य सोह लोकांजयति एतदेवं विद्वान प्राणिषु पंचविधम परोवर्य सामोपास्त इतिनो पंचविधस्य। परोवर्य इसका फल प्राप्त होता है, उत्कृष्ट लोक प्राप्त होता है। परोवर्य पर उत्कृष्ट लोकान, ये लोक को जीत लेता है, इसे जो उपासना करता है प्राण बुद्धि से पांच प्रकार साम उपासना करता है, उत्कृष्ट साम उपासना करता है, तो उसके अनुसार फल प्राप्त करता है। इति तो पंचविध से कह करके पांच प्रकार साम उपासना कहा गया, आगे सात प्रकार साम उपासना करेंगे। जो पांच भाग कहा था उसी पांच भाग में और दो भाग मिला देंगे तो सात हो जाएगा विभाग। उद्गित तृतीय आया था, उसके पहले आदि, उसके बाद उपद्रव, पांच दो सात हो जाएगा, अभी इसमें आज सात। अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधम साम उपासित यत किंच वाच होमिति सहिंकारो यत प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदि। सप्तविध से साम का उपासना भी प्रारंभ करते हैं, साधु साधु साम साधु दृष्टि करके। सप्तविधम वाचि सप्तविधम साम, सात प्रकार साम वाक दृष्टि करके उपासना करे। यत किंच वाच होमिति, जो शब्द है होम होमकार है हूं, ये साम के हिंकार में हिं, इसे हिंकार में शब्द होम, ऐसे शब्द दृष्टि करे। होम एक शब्द है, साम का भाग है हिं हिंकार, हिंकार में होम बुद्धि करके उपासना करे। और शब्द कहें प्र आता प्र, यत प्र इति स प्रस्तावो, तो प्रस्ताव भाग में साम के प्रस्ताव भाग में प्र शब्द चिंतन करे। यद्येति आ इति, एति आ कहीं आ गया समय में आ, जो आ है शब्द स आदि, साम के आदि नाम को अवय भाग है, आदि भाग में आ ऐसे बुद्धि करके उपासना, शब्द बुद्धि ये वाग बुद्धि करके, वाग वाग बुद्धि करके साम की उपासना, उपास साम, साम वाग शब्द बुद्धि करे। शब्द बुद्धि करने के लिए पहले हिंकार में क्या शब्द हूँ। दूसरा प्रस्ताव में क्या शब्द प्र, तृतीय किसमें आ, आ शब्द किसमें करे, आदि क्या चीज है शाम का तृतीय भाग, तृतीय और चतुर्थ हो जाएगा उद्गीत। पहले पांच में तो तृतीय उद्गीत था, और सात जो हो जाएगा तृतीय हो गया आदि, और उद्गीत कितने होगा चौथा, और पंचम होगा उपद्रव, एक अधिक आएगा। यद उदिति स उद्गीत हो, यद प्रतीति से प्रतिहार हो, यद उपेति से उपद्रव हो, यद नीति तन्निधनम, यद उदिति उद शब्द है स उद्गीत, शाम के उद्गीत कौन सा भाग हुआ उद्गीत, चतुर्थ हो गया उद्गीत, चतुर्थ उद्गीत में क्या बुद्धि करे शब्द उद, उद्गीत में उद है तो उद शब्द बुद्धि करे उसमें। यत प्रतीति स प्रतिहार, शाम के पंचम भाग का नाम है, अच्छा पंचम उपद्रव आ गया, उपद्रव आ गया प्रतिहार, उसमें प्रतिबुद्धि करे। यद उपैति स उपद्रव, उप शब्द है उपद्रव, या नी इति तन्निधनम, तो नी शब्द निधन भाग में नी दृष्टि करके उपासना करें। दुग्धे अस्मै वाग दोहं यो वाचो दोह, अन्नवान नादो भवति य एतदेव विद्वान वाचि सप्तविधं सामुपास्ते। अस्मै वाग दोहं दुग्धे, वाग इसको सार फल देती है, क्या फल देती, यो वाचो दोह, जो वाग का दोह सार है, वाक से अंक करके उससे लाभ क्या फल होता है, वाणी आदि उच्चारण तो स्पष्ट करेगा। अन्नवान अन्नाद भवति यह एतदेव विद्वान वाची सप्तविधम साम उपास्ते, अन्नवान का अर्थ बहुत अन्न वाला होता है, धन संपत्ति अन्न आदि किसके पास प्राप्त होता है, ये पूर्व पुण्य का फल इसलिए प्राप्त होता है, अधिक अन्नवान अधिक है तो अन्नदान कर सकता है। अन्नदान महादानम विद्यादानम अतः परम, अन्नदान सबसे बड़ा दान है और विद्यादान उससे बढ़कर के, विद्यादान भी सब लोग नहीं कर सकते हैं, विद्या है तो दान करेंगे। शास्त्र में आया जिस प्रकार अश्वमेध कर्म जो नहीं कर सकता है उसको फल प्राप्त होगा, फल चाहता है कैसे मिलेगा, उपासना आया अश्वमेध कर्म में जिनका अधिकार नहीं है, ये बृहदारण्य में आया था, जिनका अधिकार नहीं उपासना करे फल प्राप्त करते हैं। विद्यादान का फल बहुत अधिक है, जो चाहते हम विद्यादान का फल प्राप्त कैसे करेंगे, जिसके पास विद्या हो विद्यादान करते हैं। तो इसे शास्त्र में आया विद्यार्थी को विद्वान को पुस्तक आदि रहने की व्यवस्था अन्न आदि जो दान करता है वो विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। जो विद्या अध्ययन करने वाले विद्वान, जो विद्या प्रदान करने वाले जहां रहते हैं उनके लिए रहने के लिए मकान आदि बना देते हैं, भोजन आदि व्यवस्था करते, वस्त्र आदि व्यवस्था करते हैं, तो वो भी विद्यादान का फल प्राप्त करते हैं। अन्नदान से कोई अन्य दान करो जितने दो ले लेंगे, इतने है दे, जरूरत नहीं दे दिया ले लो, घड़ी तीन चार या और कोई दिया ले लो, कोई कोई सब जो कुछ दे दिया, वस्त्र है दे दिया ले लो, कम्बल बहुत ही कोई दिया फिर रख लो, कोई दिया तो रख लेते ले लो रख लो, किन्तु अन्न खिलाने 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 पेट भर गया आगे नहीं, आगे नहीं आगे, ये हाथ जोड़ते खाओ ये हाथ जोड़ते नहीं चाहिए। एक अन्नदान में कोई मना करता नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, अन्न लेता है वो कच्चा कोई रखना खाना अलग खिलाते हैं तो मना करा नहीं चाहिए, नहीं तो जितने दे तो अन्य चीजें तो ले लेंगे, दो ही चीज बताते हैं, एक किसको पिटाई करो वो मना करा नहीं चाहिए पीटते अन्नदान करो तो नहीं खाएंगे, और बाकी कोई चीज हो ले लेंगे सब चाहिए। इसे किसको तृप्त करने के लिए अन्न देकर के तृप्त, उसी समय तृप्त, बाद में तो भूख लगेगी, किन्तु उस समय तो आप नहीं खाए चाहिए, और कोई चीज दे करके आओ नहीं चाहिए ऐसा नहीं मिलने मिलने तो ले लो। तो अन्नदान है, अन्न जो आया अन्नवान भवती, यही उप फल, ये सबके पास सामर्थ्य नहीं देने के लिए, ऐसे कोई व्यक्ति कहता है हम भी चाहते हम भी ऐसे करे दान करे कि हमारे पास नहीं है, तो जितने है इतने अनुसार करो, तो इसे चाहते बहुत लोग कि हमारे पास हो तो हम इसे करें। तो अन्न जिसे प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त किसी पूर्व पुण्य के कारण, पूर्व बहुत पुण्य कर्म करने से प्राप्त होता है ऐसा नहीं, परिश्रम करने पर भी वही आपका प्रारब्ध कर्म आपको परिश्रम करने में लगाया और सफलता देने में वही कारण, इसलिए वो भी जो प्राप्त होता है उसका ही सदुपयोग करना चाहिए। अन्नाद भवति अन्न अतीत अन्नाद दीप्त अग्नि, ये भी एक पुण्य पूर्व पुण्य का फल है, भोजन करके पचा सकता है, जीर्ण कर सकता है, भाग दृष्टि करे सात प्रकार साम उपासना करता है। अथ खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित सर्वदा समस्ते न साम माम प्रति माम प्रतीति सर्वे न समस्ते न साम। अथ खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित, आदित्य ही सात प्रकार साम, अर्थात साम में आदित्य बुद्धि करके उपासना करे। साम पांच सात प्रकार साम है, उसमें आदित्य बुद्धि करे। सर्वदा सम, ये साम आदित्य साम कैसे हुआ, हमेशा समान है सूर्य, सर्वदा सम तेन साम, इसलिए उसका आदित्य को साम कहते हैं। सर्वदा सम क्या, हमेशा पूर्व दिशा में उदय होते सूर्य भगवान, कभी व्यतिक्रम होता है, आज सब लोग सूर्य का दर्शन करते हैं, किसके सामने सूर्य भगवान है, सबके सामने, तो भगवान सूर्य का दर्शन करते तो कहते माम प्रति, मेरे सामने कहते माम प्रति, प्रातःकाल सूर्योदय प्रणाम कर दर्शन करना चाहते हैं, सब लोग दर्शन करते जहां जितने सब क्या कहेंगे, सामने पूर्व दिशा देखते तो सूर्य मेरे सामने, सर्वदा समम माम प्रति माम प्रति थी, सब कहते मेरे प्रति सूर्य भगवान सामने, मेरे ऊपर देख रहे हैं, मेरे सामने है, इसलिए सर्वे न सम सबके साथ समान हुआ, ये साम भगवान, इसलिए सर्वत्र सबके प्रति समान है, जैसे आदित्य भगवान सबके समान है और सबका प्रणाम ग्रहण करते हैं, प्रातः काल हजार हजार करोड़ों लोग उनका दर्शन करते प्रणाम करते, कितने स्थान में सबका प्रणाम ग्रहण करते, सबको दर्शन देते सबको आशीर्वाद देते, इसी प्रकार परमात्मा है, ये तो आदित्य भगवान सामने दिखते है, इसी प्रकार परमात्मा सबका ग्रहण करते, जिस समय जो जहां प्रणाम करता है सत्कर्म करता है परमात्मा देखते पीत होते फल देते, ऐसे साम समस्ते सर्वेण समस्ते न, इसलिए साम का आदित्य को तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि इति विद्यात् तस्य यत् पुरोदयात् सहिंकारश्च तदस्य पशुवन्नायतास्तस्मात् हिं कुर्वन्ति हिंकार भाजिनो ये तस्य साम्नः। अभी साम बुद्धि से आदित्य की उपासना, तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि, यह जो साम रूप आदित्य है सारे भूत उसमें अनुगत है, आदित्य को आश्रित करके जीवित रहते हैं सारे भूत अन्वायते, इति विद्या से समझे, ऐसे उपासना करे, जो साम रूप आदित्य है सारे भूत उनमें आश्रित है, सब आश्रित होकर जीवित है समझे। तस्यत पूर्व उदयात सहिंकार, साम के हिंकार भाग में सूर्य उदय के पहले जो समय ऐसे बुद्धि करे, उदय होने के पहले भी प्रकाश थोड़ा आ जाता है, अरुणोदय समय होता है, सूर्योदय के पहले कहते हैं अरुणोदय, लालिमा दिखती है उधर पूर्व दिशा में और सूर्य दर्शन के पहले भी प्रकाश आ जाता है, आता है ना, नहीं सूर्य दर्शन नहीं हुआ तो ही प्रकाश हो गया, उदय के पहले जो है हिंकार में यही से बुद्धि करे, ये जो सूर्योदय के पहले समय है हिंकार में बुद्धि करने के लिए तदस्य पशव अन्वायता, सारे भूतों से आश्रित है, इसी को पशु उसमें अनुगत है, पशु उसको आश्रित है, सूर्य उदय के पहले तस्मात हिम कुरबंती, उदय के पहले पशु उठ जाते हैं, मनुष्य तो सूर्य उदय होने के बाद ही दो चार घंटा तो कहीं के सो जाते हैं, उठने नहीं, आजकल ऐसे करते कोई कोई कहते हैं, किन्तु पशु पक्षी उनको कहीं उठाए नहीं उठाए, उठ करके मनुष्य को उठाते हैं, पशु पक्षी उठ जाते हैं सूर्योदय के पहले अपने आप उठ जाते हैं, उनको कैसे समय पता चलता है, और कहीं कहीं तो तीन बजे गंगोत्री में स्थान में रुक रुके एक एक चिड़िया को ठीक तीन बजे वो शब्द करती ऐसे कुछ करते, तो सब ठीक बताए महात्मा, बोले ये कहीं कहाँ है, कहाँ पत्थर के बीच में है, कौन उसको खिलाता है, कौन क्या करता है, कहाँ रहता पत्थर में किसने टंडी, किन्तु तीन बजे ठीक समय पर शब्द, वो ठीक समय उनको कैसे मालूम भगवान की इसी रचना ईश्वर कैसा है, वो उनको पता है, हमको पता नहीं चाहिए, घड़ी देखना पड़ता है तीन चार बार कितने बजा चार बजे कब चार बजे के देखते पता नहीं चलता, किन्तु उनको पता है, और आलस्य प्रमाद में उठ करके खड़े हो जाते हैं इंकार करते हैं, तो हिम कुरुबंदी उठते मनुष्य को जगाते हैं, ये कौवा भी इस प्रकार मनुष्य को जगाते हैं, पशु पक्षी भी जगाते हैं। हिंकार भाज नहीं तसे सामना, ये साम के हिंकार को ही आश्रय करने वाले पशु है। सारे भूतों में आश्रित है। अथ यद प्रथम उदिते स प्रस्ताव तदस्य मनुष्य अन्नायतास्तस्मात् प्रस्तुति कामाः प्रशंसा कामाः प्रस्ताव भाजिनो हे तसे सामनः। यत प्रथम उदिते, उदय होते ही सूर्य की जो अवस्था है उसी बुद्धि से शाम के अवयव प्रस्ताव की उपासना करें। शाम के अवय प्रस्ताव में उदित आदित्य की दृष्टि करें। तदस्य मनुष्य अन्यायत, ये जो आदित्य भगवान है, ये जो प्रस्ताव भाग है प्रारंभ उदय होते ही, इसी को मनुष्य लोग उसमें अन्यायत अनुगत है, उसमें आश्रित है। तस्मात् प्रस्तुति कामाः, प्रस्तुति प्रशंसा चाहते हैं मनुष्य लोग, चाहते हैं प्रशंसा को भी करने से खुश हो जाते हैं। ऐसा प्रस्तुति प्रस्तुति कामा का प्रशंसा चाहते हैं। प्रस्ताव भाजन हित से सामन शाम के ये प्रस्ताव को ही मनुष्य लोग आश्रित होते हैं। अथ यद संगम वेलायाम स आदिश तदस व्यांश अन्वाय तानी तस्मात्नि अंतरिक्ष अनारंभणान्य आदावात्मान परिपतंत्य आदि भाजी ही तसे सामन। संगम वेलायाम, संगमे किरणों के इकट्ठी हो जाना, इकट्ठे हो जाते सब सूर्य भगवान किरण फैलाते शाम समय सब इकट्ठे कर लेते हैं। स आदि ही इसमें तदस्य व्यांश अन्वायतानि, पक्षी उसमें आशित है। तानि अंतरिक्ष अनारंभणानि आदो आत्मान परिपतन्ति, सायंकाल हो जाता है तो पक्षी कहां कहां दूर दूर तक जाते हैं, फिर सायंकाल होने के पहले फिर वापस आते हैं। पक्षी कैसे उड़ते कभी देखो, कभी तो ऐसे ऐसे नीचे ऊंचे कर जाते हैं, कभी ऐसे स्थिर रखते हैं, स्थिर कर चलते हैं ये जो यो मजा में चलने समय, और कोई पक्षी बहुत दूर है चील आदि बहुत ऊपर है हमेशा स्थिर ही रहते हैं, उनका हिलाना नहीं पड़ता। ये छोटे छोटे यूज करते हैं और कहने ऐसे करके चल जाते हैं। ये मनुष्य अपने को बड़ा मानता है, मनुष्य के पास क्या सामर्थ्य है बताओ, पक्षी में जो सामर्थ्य वो सामर्थ्य अपने पास है, बंदर में सामर्थ्य यहां से वहां छलांग ला दिया, मनुष्य के पास है। बंदर के छोटे बच्चा पकड़ लेता है छलांग लगाने पर, वो पकड़ कर रखता है, मनुष्य बच्चा ऐसे रहेगा उसको पकड़ कर जाओ, वो बच्चा नहीं, वो बच्चा बंदर की बच्चा मनुष्य के बच्चा से अधिक बुद्धिमान हुआ। मीन आदि मछली आदि पानी में, उनके पास सामर्थ्य पानी में बहते नहीं, विपरीत भी चले जाएंगे, डूब कर रहते हैं पानी अंदर, डूब करके भी रह जाते हैं। मनुष्य के पास थोड़े समय डूब गया, एक दो मिनट अधिक हो गया तो खत्म हो जाता है। तो ऐसे सब पशु पक्षी में भी ऐसे सामर्थ्य है, पक्षी उसको आश्रित होते हैं समय, पंख ऐसे करके कैसे करते अपने अनालंबन, आलंबन के बिना इसे अंतरिक्ष आकाश में करके फिर चल जाते हैं, उड़ जाते हैं। अथ यत संप्रति मध्यम दिने स उद्गीत तदस्य देवा अन्वायतास्तस्माते सप्तमाः प्राजापत्यानाम उद्गीत भाजिनो हेतस सामनः यस्मिन् संगमनः। यहां जो संगमन यहां पहले हुआ ये सायंकाल का संगमन नहीं है, सायंकाल तो आते हैं, यहां सम्यक गमनम संगम, जिस समय पक्षी रश्मि जाती है, पहले उदय होने के बाद फिर सूर्य के रश्मि फैलेंगे, ये समय है पक्षी, पक्षी उड़कर जाते हैं, ये वापस आने का अभी नहीं है, वापस आना पीछे है। अभी ये सम्यक गमन है इसलिए उसी समय पक्षी अन्वत अपने स्थान जाकर विभिन्न स्थान में उड़ते हैं। अतः संप्रति मध्यान दिन मध्यान्ह काल में स उद्गीत तदस्य देवा अन्नायता तो देवता उद्गीत दृष्टि मध्यान दिन सूर्य में उद्गीत में मध्यान दिन सूर्य दृष्टि करके उपासना करे श्रेष्ठ है। देवा उसमें आश्रित है तस्माते सप्तमा इसे श्रेष्ठ होते विशिष्टतम होते ही प्रजापत्या नाम उद्गीत ये प्रजापत्य है प्रजापति के अपत्य है उद्गीत को आश्रय करने वाले श्रेष्ठ होते है उद्गीत भाजन ही एतसे सामना शाम के जो उद्गीत उसमें आश्रित है। अथ यद ऊर्धम मध्यम दिनात प्राग परानाश प्रतिहार तदस्य गर्भा अन्नायता तस्माते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहार भाजिनो हेतस्य सामनः। ऊर्ध्वम मध्यम दिनात मध्यान्ह के बाद अपराह्न के पहले तो प्रतिहार अर्थात शाम के प्रतिहार भाग में ऐसे सूर्य का दर्शन, सूर्य की दृष्टि करके उपासना करें। अपराह्न के पहले, मध्यान्ह देने के बाद, जैसे 2 बजे समय, तदस्य गर्भान्वयत, से गर्भ उसमें आश्रित है, जैसे स्त्री के गर्भ में रहते हैं, तस्मात प्रतिहृता नाव पद्यन्ते, इसे उनके द्वारा खींची कर रखे जाते हैं, अर्ध नीचे नहीं गिरते हैं। प्रत्याहार भाजिन ही तस्य सामने, क्यों शाम के प्रत्याहार को आश्रित है। अथ यद ऊर्ध्वम अपराह्नात् प्राग प्रागस्तमयात् स उपद्रव तदस्यारण्यान्यायता तस्मात् पुरुषं दृष्ट्वा कक्षं स्वभ्रम इत्युपद्रवन्ति उपद्रव भाजिनो येतस्य सामनः यथ यद ऊर्ध्वम अपराह्नात्, अपराह्न के बाद, प्राग अस्तमयात, अस्त होने के पहले, स उपद्रव है, अब अस्त होने के पहले, तदस्य अरण्य अन्यायत, अरण्य में रहने वाले पशु उसमें आश्रित है, तस्मात् पुरुषं दृष्ट्वा, मनुष्य को जो देखते हैं डर करके जंगल में घुस जाते हैं, कक्षम शभ्रम इतुपद्रवंती, कक्षम अरण्य, शभ्र भय शून्य स्थान, भाग जाते हैं, उपद्रव भाजन हेतु से सामने, साम के उपद्रव को आश्रित है। अथयत प्रथम अस्तमिते तन निधनम तदस्य पितुरन्नायता तस्मात् निदधति निधन भाजिनो हेतस्य सामन एवं खल्वम आदित्यम सप्तविधम सामुपास्ते अस्तमिते, अस्त हो जाने पर उस समय ठीक अस्त होने के बाद तुरंत निधनम पितृलोक उसमें संबद्ध आश्रित है। तस्मात् निदधति उसमें पितृलोकों को अपराह्न में पिंड दान करते हैं, सायंकाल नहीं करते, अपराह्न में करते, प्रातः काल नहीं। निधन भाजन से शाम के निधन को ही आश्रित होते हैं, पिंड आदि उनको देते हैं, पिता पितामह प्रपितामह पुरुष स्थित है, उनको पिंड प्रदान करते हैं। अमुम आदित्यम सप्तम, इसी प्रकार आदित्य बुद्धि करके 7 प्रकार शाम का चिंतन, शाम में आदित्य बुद्धि, शाम ही आदित्य भगवान है ऐसे बुद्धि करके उपासना करें। दिन रात सूर्य के द्वारा होने से, दिन रात होकर के समाप्त होने पर सब प्राणी जब आयु समाप्त होता मर जाते हैं, तो आदित्य को मृत्यु रूप से भी कहा गया, वही दिन रात करके आयु समाप्त करते हैं। अथ कल आत्म सम्मितम अति मृत्यु सप्तविधम सामुपासीत हिंकार इति त्र्यक्षरम प्रस्ताव इति त्र्यक्षरम तत्समम। अथ कल आत्मसमितम, अपने आत्मा के साथ समान ही, आत्मा के साथ समान क्या है, अपने अवयव का तुल्य परमात्मा के तुल्य समान ही, परमात्मा के तुल्य साम, ऐसे बुद्धि से उपासना करें। अतिमृत्यु यह है, ये जो उपासना बताएंगे, अतिमृत्यु मृत्यु को जीतने के हेतु इसी उपासना करे तो मृत्यु को जीत लेता है उपासक। सप्तविधम साम उपासित, अति मृत्यु नामक साम में 7 प्रकार साम इस उपासना करे। पर प्रथम भक्ति उद्गीत कहा गया था, उपासक कहा था, इसी प्रकार यहाँ 7 प्रकार भक्ति के जो नाम है, जैसे उद्गीत में पहला आया था उत घी थ, उद्गीत नाम अक्षर उपासना आया था, 7 प्रकार साम में जो अक्षर नाम है उसको ले करके उपासना बताते हैं। हिंकार इति त्रिअक्षरम, हिंकार कहेंगे तो हिंकार 3 अक्षर हुआ, अप्रस्ताव इति त्रिअक्षरम, प्रस्ताव 3 अक्षर हुआ, ये दोनों बराबर हो गए तत्समम। आदिर इति 2 अक्षरम, प्रतिहार इति 4 अक्षरम, तथा यही कहूं तत्समम। आदिरीति 2 अक्षर, प्रत्याहार 4 अक्षर, 4 अक्षर माने से 1 अक्षर इधर ले आएंगे तो ये 3 अक्षर 3 अक्षर हो गया, 3 3 अक्षर हो जाएगा, तत्समान सबको 3 3 अक्षर कर कहते, ये एकम तत्समान समान हो गया, 3 3 हो गया, संख्या पूर्ण करने के लिए। उद्गीत है 3 अक्षरम, उपद्रवेति 4 अक्षरम, त्रिभी समम भवत्य अक्षरम अतिशिष्यते 3 अक्षरम तत्समम। उद्गीत 3 अक्षर है, उपद्रव 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर में 3 अक्षर उद्गीत के साथ समान हो गया और 1 अक्षर बचा त्रिवी समम भव अक्षर अतिशिष्यते, 1 अक्षर अतिरिक्त रहा, इस अक्षर भी 3 अक्षर के अंतर्भूत करके समान करते हैं। आगे बताएंगे। निधन मिति त्रिअक्षरम तत्समम एव भवति तानि हवाए तानि द्वाविंशतिरक्षराणि निधन तीन निधन तीन समान व्यतीन तीन अक्षर हो गया। तानि हवाए तानि द्वाविंशति अक्षराणि इक्कीस अक्षर तीन तीन हो गया और एक अधिक रहा बाईस हो गए। एकविंशत्या आदित्यम आत्मनोति एकविंशो वा इतो असावादित्यो द्वाविंशेन परम आदित्याजयति तन्नाकं तद्विशोकम् एकविंशत्या आदित्यम आपनोति एकविंशति अक्षर के द्वारा आदित्य के इक्कीस अक्षर से आदित्य को प्राप्त कर लेता है क्योंकि आदित्य इक्कीसवां है। इक्कीसवां कैसे मिसावकर बारह मास है पांच ऋतु है बारह पांच सत्रह होगी तीन लोक भूर वर्ष तीन होगी बीस हो गए और इक्कीसवां आदित्य तो आदित्य इक्कीस ये तो असो आदित्य यहां से हिसाब करेंगे आदित्य इक्कीसवां है और बाईस अक्षर में एक अक्षर बचा था द्वाविंश है न परम आदित्या जयती जो बाईसवां अक्षर है आदित्य से पर को जीत लेता है उपासक आदित्य के पर आदित्य के अंतर्गत तो जन्म वर्ण आ गया किन्तु से पर को जीत लेता है स्वर्गों को जाता है तन्नाकम तद विशोकम नाकम स्वर्गों के में नाकम कहते कम का है तो सुखम और न कम इत अकम क्या होगा दुख हो गया और अभिद्यमानम अकम यस्मिन जिसमें अक है ही नहीं दुख है ही नहीं न और अक मिला तो क्या होगा नाकम क हो गया सुख न कम इत अकम हो गया दुख और अभिद्यमानम अकम यस्मिन जिसमें अक नाम दुख है ही नहीं हो गया नाकम स्वर्ग स्वर्ग में दुख है ही नहीं ये सुख उसको प्राप्त करता है विशोक मनुष्य दुख रहित तो हो जाता है ये उपासक आपनति आदित्यस्य जयम परोहास्य आदित्य जया जय भवति ये तदेवं विद्वान आत्म सम्मितम अति मृत्यु सप्तविधम सामुपास्ते सामुपास्ते आपनति आदित्यस्य जयम आदित्य को जीत लेता है मृत्यु को जीत लेता है मृत्यु को चर के परो को प्राप्त कर लेता है परोह आश आदित्या जयात जय भवति आदित्य को जीतने से आदित्य जयात परो जय भवति पर जय होता है मृत्यु को जीत लिया उपासक द्वाविंशति अक्षर से स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। एतदेव विद्वान आत्म सम्मितम आत्मा परमात्मा के समान तीन तीन अक्षर करके समान करके ये अति मृत्यु है उपासना क्योंकि मृत्यु को पार करने के लिए मृत्यु को जीत लेने की उपासना होता है तो सात प्रकार शाम में ऐसे आदित्य बुद्धि करके उपासना के अक्षर के चिंतन करें। अभी नाम नहीं लेकर के पंचविध शाम सप्तविध शाम उपासना कहा अभी सब नाम लेकर के शाम में नाम लेकर के उपासना कहते हैं। मनोहिंकारो वाक प्रस्ताव चक्षु उद्गीत श्रोत्रम प्रत्याहार प्राणो निधनम एतद गायत्रम प्राणेशु प्रोतम हिंकार में मनोबुद्धि करे मनोबुद्धि करे हिंकार की उपासना प्रस्ताव में वाघ बुद्धि करे उपासना करे उद्गीत में चक्षु बुद्धि करे प्रत्याहार में श्रोत्र बुद्धि करे निधन में प्राण बुद्धि करे। यह जो साम भाई एतद गायत्रम प्राणेश प्रोतम गायत्र है साम साम का नाम गायत्र गायत्री छंद से प्राण में ये गायत्री प्राण से स्तुति करते तो गायत्रम साम गायत्री संबंधी प्राण में आश्रित है। अब अलग अलग उपासना में अलग अलग साम का नाम कहेंगे अभी फल बताते हैं। स य एवं एतद गायत्रम प्राणेश प्रोतम वेद प्राणी भवति स य एवं एतद गायत्रम प्राणेश प्रोतम वेद प्राणी भवति सर्वम आयुरेति जीव जीवति महान प्रजया पशुभिर् भवति महान कीर्त्या महामना स्यात् तद व्रतम प्राण में प्रोत आश्रित ये जो गायत्री की उपासना करता है प्राण बुद्धि से गायत्र गायत्र नाम का साम इसकी उपासना करते प्राण बुद्धि करके प्राणी भवति प्राणी भवति अंतर प्राण वाला होता है प्राण वियोग नहीं होता है सर्वम आयुरिति संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है शतम वर्षाणि समायु सर्वम आयु पुरुषस्य पुरुष के सौ वर्ष आयु से कहा गया तो संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है आयुर्ति। ज्योग जीवती, ज्योग होता है उज्ज्वल जीवन होता है। जीवन उज्ज्वल कैसे होगा? उज्ज्वल का अर्थ जो अपना कल्याण करता है, परोपकार करता है, उसका जीवन उज्ज्वल। खाली खा पी कर मरता है तो पशु पक्षी मरता है, उसको उज्ज्वल जीवन नहीं कहते। उज्ज्वल जीवन तो स्वयं भी कुछ अपना कल्याण करता है, दूसरे भी दूसरा भी उपकार करता है, अन्य का उपकार करता है, ये होता है उज्ज्वल जीवन है। तो वही जीवन उत्कृष्ट होता है। जब तक तो जीवन है, जब तक तो सामर्थ्य है, तो परोपकार कुछ ना कुछ करे और अपना भी कल्याण करते रहे। परोपकार है तो परेशान अन्यों का उपकार को कहते परोपकार। अब पर शब्द से पर का अर्थ परमात्मा, परमात्मा का उपकार। अन्य का उपकार परमात्मा बुद्धि से करनी चाहिए। अन्य की सेवा, अन्य को कुछ देते हैं, अन्य को सम्मान करते हैं तो परमात्मा बुद्धिया करे। जब जिसको प्रणाम करते हैं तो परमात्मा बुद्धिया करनी चाहिए, तो स्वाभाविक कहा था। सम्मान करके परमात्मा बुद्धि से सेवा करते समय उपकार करे, ये भावना करे परमात्मा सर्वत्र है। सर्वत्र परमात्मा है तो किसी का कुछ उपकार करते समय एक तो अभिमान छोड़े, परमात्मा की कृपा से कुछ इस शरीर से हो रहा है, ये परमात्मा की कृपा समझे, अपने में कुछ बड़ापन नहीं है। ये सद्बुद्धि आनी कि हम कुछ करना चाहिए, ये परमात्मा की विशेष कृपा से अनेक जन्म की पुण्य का फल होता है, तभी भावना होती है हम कुछ करें। और करते समय ये सकारे में जो कर रहा हूं किसी का कर रहा हूं, सर्वत्र परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, जो परमात्मा के लिए हो रहा है ऐसा भावना से करें। तो सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करके सब करें, तो उपकार करने के लिए भी परशाम उपकार, अन्य का उपकार, परस्य परमात्मा उपकार। परमात्मा का भी उपकार एक बड़ा उपकार है, पर उपकार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराण में व्यास जी कहते दो ही वचन है, व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय। पुण्य के लिए परोपकार करना चाहिए, परोपकार ही पुण्य के लिए, और पापाय परपीडनम्, दूसरे को पीड़न कष्ट देते हैं किसी प्रकार तो पाप होता है, दूसरे उपकार। पुण्य करना है तो परोपकार करो, और दूसरे की कष्ट देते हो तो पाप होता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो अन्य को अन्य का उपकार यही पुण्य है, अन्य को कष्ट देना। तो परोपकार पुण्याय जो कहा गया ये तो सामान्य अन्य का उपकार परोपकार, परेशान उपकार परोपकार, और एक अर्थ था परस्य परमात्मन उपकार परोपकार, परमात्मा का उपकार। परमात्मा का उपकार क्या है? परमात्मा का उपकार ये है, कोई व्यक्ति संपन्न है, मालिक है, उसको यदि कह दिया ये नौकर है, ठीक है ना, वो दूसरे व्यक्ति कहता है अरे इनको ऐसा कहता है, वो तो मालिक है, नौकर कैसे है, नहीं ऐसा नहीं कहना, उसको बता के समझते परमात्मा ये मालिक है। अभी वो जो इसे बताया मालिक है, वो नौकर नहीं है, ये उनका उपकार करता है नहीं, वो जो कोई निकृष्ट कहकर उनको तिरस्कार करता था, और दूसरे कहता ऐसा नहीं कहो, ये तो बहुत महान व्यक्ति है, ये तो बड़े मालिक है, इनसे ऐसा नहीं कहो, केवल मालिक हो किसी स्थल पर कोई किसी को हता रहे ऐसा कह तो ये कोई सामान्य व्यक्ति है, ऐसे कोई कह दे, कहते तो उसका उपकार हुआ, व्यक्ति को बता दिया। परमात्मा आनंद रूप परिपूर्ण है, उसको छिपा करके कहते मैं दुखी हूं, जन्म मरने वाला हूं, किंते न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारिणा अन्यथा संतम आत्मान यो अन्यथा प्रपद्यते। आत्मा परिपूर्ण आनंद होते हुए भी जो अन्य प्रकार मानता है, जानता है, कहता है किम पापम तेन न कृतम, क्या पाप उसने नहीं किया, वो तो चोर है, क्या चोरी की उसने, आत्मा अपहारिणा, आत्मा का अपहार कर लिया। चोर क्या करता है, दूसरे चीज को लेकर के छिपा कर रख देता है, अपने पास रख लिया, हाँ मेरे पास नहीं, देखो कुछ नहीं, मैंने तो देखा नहीं कुछ नहीं, दूसरे वस्तु ला करके मिट्टी में गाड़ करके अपने पास रख करके अपने दिखाता है मेरे पास कुछ नहीं। इसी प्रकार ये क्या करता है, परमात्मा को चोरी करके ला करके अंदर छिपा करके बाहर दिखाता है, देखो मैं तो दुखी हूं, जन्म मरने वाला हूं, कितने दुखी हूं मेरे पास है, मैं तो मर जाता हूं। तुम परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, उसको छिपा कर रखा है, उसको प्रकट करो, जानो, देखो, जो बंदी में रखा गया ना वो बंदी से मुक्त करो। ये परमात्मा का उपकार है। परमात्मा इसे उपकृत होते हैं, इसे उनका उपकार क्या करना। परमात्मा स्वरूप को छिपा कर आप रख करके बाहर अनात्म पदार्थ दिखाते हैं, अन्य धन संपत्ति को लेकर के ऊपर मिट्टी देखा, देखो मेरे पास कुछ नहीं, यानी मिट्टी पत्थर थे, कहा है, अंदर रखा है। अंदर परमात्मा को छिपा करके सच्चिदानंद ब्रह्म को आप बाहर क्या दिखाते हो, मैं दुखी हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा मैं बीमार हो गया, अमुक हो गया, ये सब छोड़ करके परमात्मा को प्रकट करो। यही पर उपकार सबसे बड़ा है। अष्टादश पुराण में व्यास जी कहते हैं, अन्य का उपकार कर, अन्य का उपकार करेंगे तो परमात्मा का उपकार होता है। परोपकार करेंगे तो परमात्मा दृष्टि से करो, परमात्मा को उपकार, यही परमात्मा को उपकार। अंत में परमात्मा को जो बंधन में आपने रख करके दुखी हो तो छिपा कर रखे, वो बंधन छोड़ करके वो पकड़ कर लो, यही परोपकार। परमात्मा से प्रसन्न होते हैं जो ऐसे भक्ति करता है, वो प्रिय भक्त होता है। परमात्मा कहते मेरा बड़ा प्रिय है। और छिपा करके मैं दुखी दुखी कहता है, किसको दुखी कहता है, ये ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट, जीव उसे प्रविष्ट है, ईश्वर ईश्वर प्रविष्ट है, उसको दुखी संसारी मानते हो। जो बड़े को दुखी संसारी छोटा मान करके कहता है, विकार तुच्छ मानता है, पाप नहीं करता है। बड़े व्यक्ति को उसके महत्व नहीं जान करके उनको निकृष्ट मान करके कहता है, पाप नहीं करता है। इसी प्रकार परमात्मा को आप यहां रख करके छिपा करके अपने देह आदि मान करके ये संसारी जन्म मरण वाला ये मानते हैं तो पाप नहीं होता है कहते। इसलिए यही उपकार है, उसके स्वरूप को जान लेना। तो जो उद्योग जीवती का अर्थ आया, उज्ज्वल जीवन होता है। जीवन उज्ज्वल उसका होता है जो अपना भी कल्याण करता है, दूसरा भी उपकार करता है, वो उद्योग जीवन है। केवल खा पी कर रहना जन्म प्राप्त किया, धनुषबंधि प्राप्त है, खा पी के मर गया। यदि कुछ करता है, अपना कल्याण भी करता है, सत्संग करता है, साध्या करता है, अध्ययन करता है, जप करता है, दान करता है, यज्ञ आदि करता है, सत्कर्म करता है, उपवास करता है, सत्कर्म करता है अपना कल्याण और दूसरे का भी उपकार करता है, ये होता है जोग जीवती। ये उपासना का फल हुआ। अर्थात यही से जो जीवन जिनका होता है, ये बहुत पुण्य ईश्वर की कृपा से ऐसे होना चाहिए। जोग जीवती ये उपासना ऐसे है, मृत्यु जीत सकता मतलब ऐसे उपासना करेगा तो अपमृत्यु नहीं होगी। अपमृत नहीं मतलब सौ साल तक जीवित रहेगा, और बाकी उसके द्वारा क्रम से सर्वत्र अपमृत्यु जीतने के बाद मृत्यु को जीतने का अर्थ मृत्यु जो ग्रास करती है उसको जीतकर मृत्युंजय होगा, अर्थात क्रम से ज्ञान प्राप्त करेगा तो मृत्यु को जीतेगा। सर्वत्र मृत्यु को जीतने के लिए ज्ञान के बिना नहीं होगा। और जो स्वर्ग में चला गया उसको भी कहते मृत्यु को जीत लिया। यहां मनुष्य में बार बार मरण जन्म मरण प्राप्त करता है, स्वर्ग में जाकर बहुत दिन रहेगा तो भी मृत्यु को जीत लिया, अजर अमर देवा ऐसे कहा गया। कहीं कहीं फल इच्छा से करता है तो स्वर्ग को जाएगा, ब्रह्मलोक को जाएगा, तो जल्दी मरण जन्म नहीं होता तो मृत्यु को जीत लिया, इसे भी कह देते हैं। मुख्य नहीं हुआ, मुख्य मृत्युंजय तो होगा ज्ञान से। हाँ, विशेष ये सामान्य नहीं, विशेष उपासना करके तन्मय हो तो प्राप्त कर लेता है। और थोड़े उपासना करेगा तो थोड़े से होगा, ऐसे कितने उपासना करते करते थोड़े थोड़े होता है। परमात्मा की प्रीति तो समय मुख्य फल ही है, परमात्मा प्रीति थोड़ा करने से, अब थोड़े उपासना से एकदम प्राप्त करेगा ऐसा नहीं होगा। ऐसे जप में आया, ये मंत्र जप करो तो ये फल मिलेगा। जप मंत्र करने के लिए इतने मंत्र जप करना है, इसी नियम से करना से सिद्धि होने पर प्राप्त होता है। इस पर उपासना में भी स्वल्प उपासना मात्र तो इतने फल नहीं होता है। उपासना में जितने भावना जितने तन्मयता उसके अनुसार फल होता है। नहीं तो सामान्य दृष्ट फल कुछ हो गया, स्वर्ग में चला गया, थोड़े दिन के लिए स्वर्ग चला गया, फिर वापस आ जाएगा। और महान सर्व आयु रहती, यहां सर्वायु का था 100 साल जीवित कह दिया। महान प्रजया पशु भी होती, प्रजा पशु से महान होता है। महान कीर्त्या, कीर्ति को भी प्राप्त करता है। महामनाश्या तद व्रतम, ऐसे जो उपासना करता है उसके लिए व्रत है, कहते गायत्र उपासक के लिए ये नियम है। क्या महामनाश्यात, महत मनो यस्य, मन महान उदार चित्त हो, क्षुद्र चित्त नहीं हो। एक होते क्षुद्र चित्त वाले, मीन माइंडेड कहते हैं क्षुद्र चित्त वाले, एक उदार मन वाले। उदार मन मन से वधान्य सबको कुछ देने के लिए तैयार है, प्रेम करने के लिए कोई कुछ कहता है, सबके व्यवहार कोई कुछ कहता है तो ठीक है, थोड़ा उसकी बात सुन, उनको प्रेम से बात कर लो, प्रेम से प्रसन्न होकर थोड़ा मधुर वाणी बोलना, ये भी एक ईश्वर की कृपा है, मधुर भाषण होना। तो सबके प्रति उदारता है महामना में सियात। और परिच्छिन्न में अपना ही तो देखना, दूसरे को कोई परवाह नहीं करना, ये संकुचित भाव। महामानव से सबके प्रति समान, जितने अधिक अधिक विस्तार करे सर्वत्र अपन तो है। अभिमंथति स हिंकारो धूम जायते स प्रस्तावो ज्वलति स उद्गित अंगारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति तन्निधनम संशाम्यति तन्निधनम एतद् रथांतरम अग्नौ प्रोतम। अभी अग्नि दृष्टि से इसे शाम की उपासना, पहले अग्नि मंथन करते हैं, मंथन कर अग्नि को प्रकट करते हैं। अभिमंथति जो मंथन करते पहले हिंकार, शाम के अवयव हिंकार में इसे मंथन बुद्धि करे। मंथन करने से धूम जाए थे, धूम उत्पन्न होता है, तो शाम के अवयव प्रस्ताव में इसे धूम बुद्धि करे। अग्नि मंथन करने से धूम निकला, फिर अग्नि प्रकट होने से ज्वलती स उद्गीत, उद्गीत पंच ये पांच पांच भक्ति कही, जो उद्गीत में ज्वलन बुद्धि करे। जलने के बाद लकड़ी जल की ज्वाला खत्म होने पर फिर अंगारा रह गई, और प्रतिहार में अंगार बुद्धि करे, अग्नि अंगार ज्वलन समाप्त हो गया, फिर अग्नि शांत हो जाती, निधन में अग्नि अग्नि उपशांति बुद्धि करे, संसाम्यति तन्निधनम उपसाम्यति तन्निधनम, पर शांत होता है फिर समाप्त हो जाता है, संसाम्यति तन्निधनम एतद् रथंतरम अग्नोप्रोतम। रथंतर नाम का शाम है, शाम के नाम लेकर कहते अग्नि में आश्रित है। स एवं एतद् रथंतरम अग्नोप्रोतम वेद ब्रह्म वर्चस्य अन्नादो भवति सर्वम आयुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर् भवति महान कीर्त्या न प्रत्यंग अग्नि माचमे न निष्ठीवे तद व्रतम। जैसे रथंतर शाम की उपासना करता है अग्नि बुद्धि करके, अग्नि में आश्रित रथंतर शाम इसकी उपासना करता है। ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्चस होता है कि तेज, एक शरीर चर्म देह में जो कांति है तो केवल तेज है, तो ब्रह्म वर्चस होता है वृत्त साध्या निमित्त तेज, सदाचार वृत्त है, सदाचार शास्त्र भी तो कर्म जो करता है, स्वाध्याय करता है, वेद आदि शास्त्र का अध्ययन करता है, सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ने पर जो एक विलक्षण तेज है उसको कहते ब्रह्मवर्चस। ब्रह्मवर्चस के तेज विलक्षण तेज, खाली तेज हो गया शरीर कांति, शरीर की कांति, किंतु जो सदाचारी है, सदाचार करने पर सन्मार्ग में चलने पर मन में एक प्रसन्नता, सत्वगुण की वृद्धि, सत्वगुण बढ़ने पर स्वाध्याय वेद आदि अध्ययन करने पर बिल्कुल शास्त्र का चिंतन, वैदिक मंत्र का पाठ श्रवण सत्संग अच्छा स्मृति गीता आदि का पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, सदाचारी है, मिथ्यावासा नहीं करता है, ऐसे सन्मार्ग में चलने पर उसके शरीर में ये ब्रह्म वर्चस्व नाम का तेज होता है। वो तेज को सामान्य रूप से नहीं जान सकते सब लोग, जो सन्मार्गस्थ उनको जानते हैं, दिखने से उनको लगता है, और स्वयं अपने साधक भी जब प्रसन्न रहता है, सन्मार्ग में चलने पर प्रसन्न होता है, जब साधन कुछ जप किया, पाठ किया, उपवास व्रत किया, अपने आप प्रसन्नता होती है, वो जो प्रसन्नता है अंदर से प्रसन्नता आने पर जो मुख खिल जाना, और बाकी विशेष एक है ना वे भेद है, कुछ प्राप्त नहीं होने पर जो अंदर से प्रश्न, जब कोई आप कोई साधक देर में उठा, जप नहीं कर पाया, श्रद्धा नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, मुख काला हो जाता है, और जितने भी अच्छा होने पर बहुतों को प्रशंसा करे, अंदर से तो अपने को लगता है कि जैसे स्वयं चोर है, कोई चोरी चोरी किया चोरी किया, चोर तो नहीं कहे, हम देखते हैं महात्मा को देख करके पता चल जाता है, देखने से पता चलता है इसने कुछ गलती की, सुबह सुबह प्रातःकाल उठ करके मंदिर में आना चाहिए, कोई नहीं आ पाया, नहीं पाए कुछ, किंतु अपने आप ही वो देर उठा तो अपनी ग्लानी होती है, साधक में ऐसा होता है, कोई सन्मार्ग में जब ध्यान कुछ किया तो अंदर इतने प्रसन्न इतने निर्भय हो जाता है, वो चलने में बात करने में उसका रहता है, उसका प्रकट हो जाता है, छिपा नहीं सकता, मुख में इसे प्रसन्नता आ जाती, और यदि कुत्सित कर्म करता है, निंदित कर्म करता है, जो ग्लानी होती, जो अत्यधिक पापी वो भी अलग है, जो थोड़े साधक है नहीं कर पाया तो मन में ग्लानी होती, असंतोष होता है, कभी बैठकर बात करते तो मन में वो जितने कुछ होने पर उसके मन में दुख प्रकट हो ही जाता है, छिपा नहीं सकता है, मुख से ही हो जाता है, मुख देखने से। ये जो ब्रह्म वर्चस्व से तेज, यही तेज हुआ, सदाचारी हो, सन्मार्ग में चलता है, स्वाध्याय करता है, वो तेज को कहते ब्रह्म वर्चस्व। तो इसे जो उपासना करेगा ऐसे तेज उसमें होता है। और अन्नाद भवती, अन्नाद का था दीप्ता अग्नि पहले आया था, अन्नाद भवती न प्रत, इसके नियम बताते हैं, सर्वम आयु रहती, जो जो समान हो गया, पूरा आयु को प्राप्त करता है, उज्जवल जीवन होता है, प्रजा से पशु से महान होता है, कीर्ति से महान होता है। न प्रत्यग अग्नि आचमे, अग्नि की ओर मुख करके भोजन नहीं करे। शीतकाल में लोग अग्नि जलाते हैं, बैठकर खाते रहते हैं, तो अग्नि की ओर मुख करके भोजन नहीं कर, उसका व्रत है। और न निष्ठिवेत श्लेष्मा, जो कफ श्लेष्मा निकालते हैं अग्नि की ओर, ऐसे लेकर कफ नहीं निकाले, अग्नि देवता है, अग्नि देवता से कभी जब भोजन बनाते हैं, कभी अपवित्र झूठा हो गया उसको लेकर फिर अग्नि में गर्म नहीं करना चाहिए। मालूम है, भोजन बनाते हैं कभी झूठा हो गया रख लिया, भोजन करते समय देखा ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, खाते हैं ठंडा हो गया, कहते उसको गर्म कर लो, झूठा होने के बाद खाने के बाद ठंडा है उसको लेकर गर्म कर लो, नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना ठीक है। कोई चलो को इस नहीं मानते हैं, क्या हो गया, ठंडा हो गया, गर्म कर लो, लेकर चिमटा लेकर गर्म करके ले आएगी। मतलब झूठा होने के बाद, अपवित्र होने के बाद अग्नि में नहीं रखनी चाहिए, अग्नि देवता है। जब कुछ नहीं करते तो पवित्र भोजन बना करके कम से कम अग्नि में थोड़ा अर्पण करना चाहिए, अग्नि देवता है। गो को देना है, गो कहीं सर्वत्र नहीं प्राप्त होते, मिलते नहीं खिलाने के लिए। ब्राह्मण को देने के लिए ब्राह्मण सर्वदा कहाँ मिलते हैं, तो अग्नि साक्षात है देवता, इसलिए कुछ करते तो अग्नि, अग्नि इसी प्रकार अग्नि के ओर बैठ करके अग्नि को देख करके खाना नहीं, और अग्नि को थूकना नहीं, अग्नि में इसे अपवित्र को नहीं रखना, कहीं खाते समय कुछ हो गया ठंडा हो गया उसको लेकर अग्नि में गर्म करना उचित नहीं है। कुछ लोग जो नहीं जानते करते, जो जानते हैं नहीं करते, नहीं करना चाहिए। साधारण लोग बहुत लोग जानते नहीं करते, किंतु कुछ धीरे धीरे ये जो परंपरा का ज्ञान नहीं होता है, आधुनिकता का प्रवेश हो जाता है, अपने बुद्धिमत्ता का आरोप करके अपनी इच्छा से करने वाले ये भी कर लेते, देखा कोई इसे कर भी लेते हैं, झूठा हो गया क्या हो गया गर्म कर लो, बस गैस है वो, अग्नि देवता ही भावना उन्हें में ही नहीं। आगे उपमंत्र सहिंकारो ज्ञापयते स प्रस्ताव, स्त्रिया सहस्येते स उद्गीत, प्रति स्त्री सहस्येते स प्रतिहार, कालं गच्छति तन्निधनम, पारं गच्छति तन्निधनम, एतद वाम देव्यम मिथुने प्रोतम। शाम में ऐसे मिथुन बुद्धि करके, मैथुन बुद्धि करके उपासना भी आए। पहले स्त्री को उपमंत्र संकेत करता है मैथुन कर्म के लिए, हिंकार हो गया, फिर उसको प्रसन्न करता है, ज्ञापयते प्रसन्न करता है, प्रस्ताव हुआ, उसके बाद स्त्रिया सदस्य होता है, शयन करता है पलंग आदि में, उद्गीत हुआ, फिर स्त्री के प्रति अभिमुख होकर के तो प्रत्याहार हुआ, फिर मैथुन कर्म में काल समाप्त करता है तो वो हो गया कालम गच्छति तन्निधनम, फिर पारम समाप्ति को प्राप्त करता है तन्निधनम। एतद वाम देव्यम मिथुने प्रोतम, राम का नाम है वाम देव्यम, ये मिथुन में आश्रित है, मिथुन बुद्धि से शाम की उपासना। सय एवं एतद वाम देव्यम मिथुने प्रोतम वेद, मिथुनी भवति मिथुनात् मिथुनात् प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीरित्या न कांचन परिहरे तद्व्रतम, न कांचन परिहरे तद्व्रतम। इसे वामदेव साम दृष्टि साम में मैथुन बुद्धि करके जो उपासना करता है तो मिथुनी भवति, वो स्त्री का वियोग उसको नहीं होता है, स्त्री वियोग नहीं होता है, मिथुनाद मिथुनाद प्रजायते और पुत्र उत्पन्न करता है। ये शास्त्र में आया विवाह करने के बाद पुत्र होना चाहिए, पुत्र अधिक हो तो अच्छा है इसे मानते हैं, प्रजायते सत्पुत्र होना और अच्छा होता है। सर्वम आयुरीति पन संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, जीवन उज्जवल होता है, प्रजा से पशु से कीर्ति से महान होता है, न कांचन परिहरे तद व्रतम, उसके एक व्रत है, इसे उपासना करने वाले इसे जो उपासना करता है, यद्यपि शास्त्र निषिद्ध है परस्त्री सेवन, ऐसे जो उपासना करता है उसके लिए कहा गया कोई यदि आए उसके सैया में तो उसका त्याग नहीं करे मैथुन कर्म के लिए उसको कहा गया ऐसे उपासना करने वाले के ऐसे वेद में आता है। उद्यन हिंकार उदित प्रस्ताव मध्यम दिन उद्गित अपराह प्रतिहारो अस्तं यन्निधनम एतद् बृहद आदित्य प्रूतम। अभी आदित्य दृष्टि से बृहत नामक साम उदय होते हुए समय उस सूर्य में हिंकार में उद्यन आदित्य दृष्टि करे और प्रस्ताव में उदित सूर्य दृष्टि सूर्य उदय हो गए प्रस्ताव में दृष्टि करे और उद्गित में मध्यम दिन सूर्य दृष्टि करे फिर प्रत्याहार में अपराह्न काल में सूर्य दृष्टि करे फिर अस्त को जाते समय उसमें निधन दृष्टि करे एतत् बृहद आदित्य प्रोतम बृहत नामक साम में आदित्य बुद्धि करके उपासना करे सय एत एवं एतद बृहद आदित्य प्रोतम वेद तेजस्वी अन्नाद भवती सर्व आयुर्ति जीव जीवती महान प्रजया प्रसवती महान कीर्त्या तपंतम न निंदे तद व्रतम। इसी प्रकार जो आदित्य में आश्रित बृहत साम इसकी जो उपासना करता है बृहत साम में आदित्य बुद्धि करके तेजस्वी होता है। ये तेजस्वी केवल शरीर की कांति ब्रह्म वर्चस्व अलग है ये तेज अलग है और तेजस्वी शरीर कांति और सबके बीच में तेजस्वी होता है लोग उसको मानते हैं। अन्नादो भवती अन्नाद अन्न दीप्ता अग्नि होता है संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है जीवन उसका उज्जवल होता है प्रजा से पशु से कीर्ति से महान होता है किन्तु उसके लिए व्रत है तपंतम न निंदेत। सूर्य तपाते गर्मी होती है लोग ठंडी के समय बड़ी ठंडी वर्षा होते समय बहुत वर्षा सूर्योदय गर्म बहुत गर्म हुआ ये नहीं करना चाहिए। उदय वर्षा भी किसके लिए आवश्यक है भगवान करते हैं ठंडी होती है आवश्यक है ठंडी होनी चाहिए। उदय होते सूर्य उदय होने के बाद गर्मी के समय गर्म तो होगा किन्तु तपंतम जो तपाने वाले भगवान सूर्य भगवान उनकी निंदा नहीं करे। तपाते से तप से लाभ होता है कभी कभी कोई बहुत गर्मी के समय गर्म हुआ कोई कहा बोले अरे गर्म नहीं होगा तो कटहल कैसे पकेगा कटहल होता है ना गर्मी में सब पकता है आम भी पकता है बहुत गर्म उनसे पकता है बोले गर्म उनसे पकेगा गर्म होने से पेड़ पौधा में गर्मी ठंडी सब आवश्यक बहुत गर्म होने के बाद भी पेड़ में पत्ते आ जाते हैं वसंत ऋतु में आगे पत्ते आते वर्षा के समय इतने नहीं आते वर्षा के समय की अपेक्षा उसके पहले सब नया पुष्प आ जाते फल लग जाते हैं तो सब चीज आवश्यक है गर्मी ठंडी सब तो उस ऋतु की निंदा नहीं करे तपंतम सूर्य भगवान की निंदा नहीं करे। चतुर्दश खंड हुआ अभ्राणी संप्रवंते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीतो विद्युतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृणादि तन्निधनम एतद वैरूपम पर्जन्य प्रोतम। वैरूप नामक साम पर्जन्य में आश्रित है वैरूप नामक साम में ऐसे पर्जन्य बुद्धि करके उपासना करे। अभ्राणी संप्रवते एकटी होते मेघ स हिंकार हिंकार में ये मेघ एकटी होते इसे दृष्टि करे। मेघ हो जाए ते सब प्रस्ताव मेघ की उत्पत्ति हुई दृष्टि करे। वर्षति स उद्गित उद्गित में वर्षा की दृष्टि करे। विद्युत स्तनयति स प्रतिहार विद्युत में मेघ गर्जन होता है तो प्रतिहार में इसे भावना करे। उद्गृणाति वर्षा होने के बाद ग्रहण कर लेते तन निधनम एतद वैरूपम पर्जन्य में आश्रित है। सय एवं एतद वैरूपम पर्जन्य पूर्वतम वेद विरूपांश स्वरूपांश पशुन अवरुंधे सर्वम आयुरेति जीव जीवति महान प्रजया पशुवीरभवती महान कीर्त्या वर्षंतम न निंदे तद व्रतम। वैरूप्य नामक वृष्टि में आश्रित वेद वैरूप्य नामक साम वृष्टि में आश्रित है इसकी उपासना करता है। विरूपांश स्वरूपांश पशु विलक्षण पशु को प्राप्त करता है विरूपांश भेड़ बकरे आदि पशु कहता अजा अभिप्रभुति स्वरूपान विलक्षण पशु गो पशु अश्व आदि पशु को प्राप्त करता है पशु अवरुंध पशु रखता है संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है उज्ज्वल जीवन होता है प्रजा पशु कीर्ति से महान होता है। वर्षंतम न निंदे तद व्रतम इसका व्रत है वर्षा होते समय इसकी निंदा नहीं करे। वसंतो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्ताव वर्षा उद्गित शरद प्रत्याहारो हेमंतो निधनम एतद वैराजम ऋतु सुप्रोतम। अभी ऋतु दृष्टि से वसंत ऋतु में हिंकार में वसंत दृष्टि ग्रीष्म प्रस्ताव में ग्रीष्म दृष्टि
उद्गीत में वर्षा ऋतु दृष्टि, प्रत्याहार में शरत और निदान में हेमंत, ये वैराज्य नामक साम ऋतु में अर्चित। स एवं एतद् वैराज्यम ऋतु सुप्रोतम वेद विराजति प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसेन सर्वमायुरेति जियोग जीवति महान प्रजया पशुभिर् भवति। स एवं एतद् वैराज्यम ऋतु सुप्रोतम वेद विराजति प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसेन सर्वमायुरेति जियोग जीवति महान प्रजया पशुभिर् भवति। महान कीर्ति ऋतु न निंदे तद व्रतम। वैराज्य नाम के साम है ऋतु में आश्रित, इसकी जो उपासना करता है, साम की उपासना ऋतु बुद्धिया, ऋतु बुद्धि से विशेष रूप में प्रकट राजति विराजति, प्रजा से पशु से ब्रह्मवर्चस से युक्त होकर के रहता है। ब्रह्मवर्चस तेज है, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्जवल जीवन होता है उसका, प्रजा पशु कीर्ति से महान होता है। ऋतु न निंदे तद व्रतम, ऋतु की निंदा करे नहीं करे, ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरत ऋतु वसंत ऋतु सब ऋतु में ऋतु के अनुसार सब होता है, किसी समय ऋतु की निंदा कर नहीं करे। ये उपासक के लिए तो कहा गया, ये सामान्य निंदा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सामान्य साधकों को जहां जहां कहा गया, कभी किसकी तपंतम आदित्य हो, ऋतु हो, वर्षा हो, निंदा नहीं करनी चाहिए। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माम ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।